نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 76 آیت نمبر 94 سے 108 سورة مائدہ. لیسن نمبر 76 آیت نمبر 94 سے 108. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 94 سے. یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم. اے ایمان والو، البتہ تم کو ضرور آزمائے گا اللہ ایک بات سے، اس شکار میں کہ جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے، تاکہ معلوم کر لے اللہ تعالیٰ کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ایمان والوں کو ایمان کی رغبت سے پکارتے ہیں. آیت کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں، جس ماحول میں اور جن لوگوں کے سامنے یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ ضروری ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں گے، کیونکہ آج ہمارے کلچر میں شکار بالکل غیر معروف ہے. شکار اس طرح کھیلا جاتا تھا جیسے کسی بھی سوسائٹی میں کوئی بہت ہی زیادہ من پسند قسم کا کھیل کھیلا جائے. نہ صرف یہ کہ ان کی ہابی تھی، بلکہ ان کے لیے گوشت حاصل کرنے کا اونلی وے تھا. یعنی عربوں نے اگر گوشت کھانا ہوتا تھا تو اس کے لیے پھر وہ شکار ہی کرتے تھے. اب پیچھے ہم پڑھ چکے سورت مائدہ کے بالکل آغاز میں کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے پر پابندی ہے. اب ہوتا کیا، انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز ہے، اور وہ کیا کہ جس چیز سے محبت بھی ہو، رغبت بھی رکھیں، مرغوب ہو، تو اس میں کشش بہت ہوتی ہے. سچ ہے نا، جس چیز میں آپ کو رغبت ہوتی ہے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے، اور وہ کشش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس پر پابندی لگ جائے. چھوٹی سی مثال سمجھ لے کہ چینی سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن شوگر کے پیشنٹ سے پوچھئے ذرا میٹھی چیز کی کیا قدر ہے، اور زیادہ اس کا دل چاہتا ہے کھانے کو. اب عرب لوگ شکار تو کھیلتے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے جب احرام کی حالت میں پابندی لگا دی کہ بھائی دیکھو احرام میں تم شکار نہیں کھیل سکتے، اور اصل میں فوکس کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ ایسا نہ ہو کہ تم احرام کی حالت میں بھی کھیل کود کر کے آ جاؤ اور اس مقصد کو نہ پاؤ جس مقصد کے لیے تم نے احرام باندھا ہے، تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو مشکل تو تم کو لگ رہا ہے، حالت احرام میں تم نے خود کو اگر روکنا ہے تو یہ بات تو بہت مشکل ہے، لیکن کرنا پڑے گا، کیونکہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ شکار کے ساتھ. آزمائش ہمیشہ پسندیدہ چیز پر آتی ہے. جس چیز میں محبت نہیں اس کی آزمائش کیا لگے گی؟ مثلا جس کے دل میں پیار نہیں پیسے کا، اس کو پیسہ خرچ کرنے سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ساتھ ایک بندے کو جوڑ دیتے ہیں. تو یہاں ان کے ناطے سے ہم سب کو بتا دیا کہ البتہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. کب؟ من الصیدی، شکار کی صورت میں. تنالہو، تنال کا لفظ کیا ہوگا بھلا، ذرا سوچے، کہیں پیچھے پڑا یہ روٹ ہم نے؟ جی جی شاباش. لن تنال البرا، تو نالا ینیلو نیلن، اسی سے لفظ نائلہ ہے، پا لینے کے معنوں میں ہے، پا لیں گے اس کو. ہو سے مراد کیا ہے یہاں؟ صید. صید کہتے ہیں شکار کو، یعنی جس کو انسان اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کے کھاتا ہے، اور اس کے اندر یعنی بعض دفعہ صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا ہوتا ہے، بعض دفعہ ضرورت کے لیے بھی، لیکن جب کوئی جانور اس کو کاٹتا ہے تو اس کو شکار کہتے ہیں. کیا پہنچیں گے اس کو؟ ایدیکم، ید کی جمع، یعنی وہ شکار اتنا قریب تمہارے آ جائے گا کہ بس ہاتھ بڑھاؤ اور پکڑ لو. ذرا سوچیے، जिसको शिकार की आदत हो और सामने शिकार हो तो उसके तो हाथों में खास खेल की आदत होती है ना, तो जो ही वो सामने रखी देखते हैं तो हाथों में खुजली होने लगती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जिस चीज से मैं तुमको मना करूं वो तुम्हारे लिए मुश्किल भी हो, वो इतना करीब आ जाएगा शिकार तुम्हारे कि वो बस तुम हाथ बढ़ाओगे और इसको ले लोगे। और ये चीज असहाबे सब्त के साथ भी हुई, सूरत अल अराफ में हम पढ़ेंगे आगे जाके कि जिस दिन मछलियां पकड़ना मना थी, जिस दिन वो मछलियां नहीं पकड़ सकते थे, उस दिन इतनी ज्यादा मछलियां आ जाती थी कि शुर्रान आंसर उठा उठा के देखती थी, यानी आम दिनों में मछलियां कम होती थी लेकिन मना किया हुआ जो दिन था उस दिन ज्यादा थी। और ये अल्लाह की एक आजमाइश होती है। आज लोग कहते हैं कि ये तो इतना आसान, अब कैसे रुके, यहाँ तो हराम से हम रुक नहीं सकते, यहाँ तो सूद से रुक नहीं सकतेगा। अल्लाह ताला कहते हैं वो हराम चीज तुम्हारे हाथों की पहुंच में क्यों ना हो, यानी वेरी इजी टू ग्रैप, बहुत आसानी से तुम पकड़ लो तो क्या ले लोगे, ये तो आजमाइश होती है। बस दफा अल्लाह ताला नाजायज और खबीस किस्म की चीजें बहुत आसानी से दिलवा देता है, तो ये असल में एक आजमाइश होती है, ना सिर्फ ये कि तुम्हारे हाथों की बल्कि वह रिमाह हुकुम, रिमाह जो है ये रमहुन की जमा है, नेजे को कहते हैं। शिकार करने के अरबों में यही दो तरीके होते थे, कुछ जानवरों को तो ऐसे ही हाथ बढ़ा के पकड़ लेते थे, जैसे मिसाल है कि कबूतर बैठा हुआ तो उसको जाके पीछे से पकड़ लिया, लेकिन दूसरा तरीका था कि जो जानवर दूर होते थे खास तौर पे परिंदे, तो वो उनका निशाना इतना अच्छा था कि एक स्टिक होती थी और उसके आगे एक छोटी सी बर्छी नुमा या एक नोक लगी होती थी, तो वो उसको जब फेंकते तो वो बिल्कुल उसकी उस जगह पे लगती कि जहां से जानवर जो है वो गिर पड़ता था। फिर तो अल्लाह ताला कहते हैं पकड़ो दोनों तरह से, छोटे और बड़े सब, छोटे और करीब के जानवरों को हाथ से पकड़ लेते थे, बड़े और दूर के जानवरों को वो नेजों से पकड़ लेते थे। कहा ये सब कुछ होगा, बहुत आसान होगा ये वो शिकार करना, लेकिन याद रखो अल्लाह ने ये पाबंदी क्यों लगाई, लियालम अल्लाह, ताकि जान ले अल्लाह, क्या मतलब अल्लाह को नहीं पता, पता तो है लेकिन हुज्जत तमाम करे, अल्लाह ये देखना चाहता है, अल्लाह को ये बड़ा अच्छा लगता है कि वो ये चीज देखे कि मैं ये खाफ़ुहु बिलगैब, कौन है जो उससे बिन देखे डरता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पास मौजूद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के खौफ से तुम रुक जाओ। और कहते हैं कि ये आयात सुलह हुदैबिया के सफर में नाजिल हुई थी, क्योंकि लोग उम्रे की नीयत से मदीना से निकल चुके थे, एहराम बांधे हुए थे, अब रास्ते में आप सोचिए कि खाने की कमी वैसे ही इतनी होती है, हम तो इतना कुछ लेके बैठ जाते, हम कहते हैं हाय क्या खाएं, लेकिन उनके पास तो यही तरीकेकार होता था कि रास्ते में कोई जानवर अगर शिकार कर पाते तो उसको खा लेते, लेकिन कितना बड़ा इम्तिहान था। आज भी अगर मदीना से मक्का का रास्ता देखें तेज गाड़ियों में 4-5 घंटों से ज्यादा ही लग जाता है, उनका तो कई दिनों का सफर था, तो ये आजमाइश थी। सहाबा का ईमान देखिए कैसा था कि उन्होंने शिकार की हद ना तोड़ी, इसके बरक्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी असाबे सब थे, उन्होंने ऐसे मौके पे हीला साजी की और बहाने से मछलियां पकड़ ली। हम सब भी अपना जायजा लें, हम कहाँ हदें तोड़ते हैं, क्या हम अल्लाह से बिन देखे डरते हैं, क्या हमारे अंदर ये खौफ है कि कोई ना देखे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे रब को तो पता है। एक सहाबी थे, उन्होंने एहराम नहीं बांधा हुआ था एक मौके पे, वो भी सफर में साथ थे, बाकी सब ने एहराम बांधा हुआ था, और कहते हैं कि जानवर इतनी करीब आके खड़ा हो, अबू दर्दा थे ये, इनका एहराम नहीं था लेकिन दूसरों का एहराम था। अब जिनके एहराम है वो जानवर को नहीं देख रहे, जैसे फिर रहा था हिरन था या गधा था, कोई भी जंगली गधा, एहराम वाले देख रहे थे और जिन्होंने नहीं एहराम बांधा वो नहीं देख रहे, ये जूती सी रहे थे अपनी। अब सहाबा कराम के लिए बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि एहराम में ना सिर्फ ये कि शिकार कर नहीं सकते, शिकार की तरफ इशारा भी नहीं कर सकते, मदद भी नहीं कर सकते। खैर कहते हैं कि सहाबा बड़े बेचैन फील कर रहे हैं कि किसी तरह ये अबू दर्दा खुद ही देख लें और इसको काट दें, लेकिन वो देख ही नहीं रहे। खैर कहते हैं कि वो इशारा भी नहीं कर सकते थे, कोई खंगूरा या आवाज भी नहीं निकाल सकते थे, बिल आखिर खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से अबू दर्दा ने ऊपर देखा तो उनको जंगली गधा दिखा। कहते हैं मैं फौरन उठा अपनी जगह से, मैंने अपना नेजा पकड़ा, मैंने उसका शिकार किया, मैंने लोगों को आवाज दी, लोगों आओ मेरी मदद करो, कोई नहीं उठा। खैर मैंने जबरदस्ती उसको पकड़ा, उसको किया, फिर उसको जिबा किया। कहते हैं जब मैंने उसका गोश्त काटा, सब कुछ, उसको पकड़ने में मदद की ना काटने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला गया, लोगों के दिल में एक शुबा आ गया कि हमने शिकार का गोश्त खा लिया तो अब क्या हम गुनाहगार हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि तुमने मदद तो नहीं की थी, नहीं इशारा तो नहीं किया था, नहीं कहा फिर अगर इसने खुद काट के तुम्हारे लिए पकाया तो खा लो, बल्कि उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा तो मुझे दो, मैं भी खाता हूँ और आपने भी वो खाया। ये है प्यारा दीन, ये आजमाइश होती है। फमन ने तदाबाद सालिका, जो इसके बाद फिर ज्यादती करे फलहू अजाब अलीम, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये आयत हम सब के लिए कायम है। आज के माहौल में ये नहीं बच सकते, इस माशरे में नहीं बच सकते, आज का दौर ये है, यहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चे यहाँ के बूढ़े इस तरह की बातें कर करके हम अपने आप को गुनाहगार करते हैं। हम सब का ये इम्तिहान हो रहा है। शिकार तो हम में से कोई कमी खेलेगा, लेकिन ये देख लीजिए कि मैं ये खाफ हूँ बिल गई, ये वो चीज़ है जो तकवा के साथ पैदा होती है। सर पे कोई हो तो काम अच्छा करना, ये तो अदना से अदना इंसान के लिए खड़े होते हैं, लेकिन पीछे से बिन देखे वही अच्छा काम कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। क्या ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह ताला हमारे सामने होते, ये आसमान शीशे का होता और हम नीचे बैठे ही ऊपर के मंजर देखते। मेरा ईमान है कि ये पॉसिबल था, जिस रब ने इतना कुछ कर दिया उसके लिए क्या मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह ने क्यों अपना आप छुपा लिया, असल इम्तिहान ये है कि करते क्या। आगे हम पढ़ेंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल बेहतरीन है। घर में कोई भी नहीं, औरत खुद बुराई की दावत दे रही है और वो अल्लाह से डर रहे हैं कि ये दरवाजे बंद नहीं हो सकते। ये वो चीजें हैं जो अल्लाह के खौफ से आती हैं, तो इसको पैदा करने की जरूरत है। आप देखिए कि शिकार की हुरमत जाती हुरमत की बिना पर नहीं थी, क्या था भाई। आप सोचे जरा एक लम्हे के लिए, आप अल्लाह के लिए जा रहे हैं, अभी हरम में पहुंचे ही नहीं, जाके अपने उम्रा तो वहां कर, किसी पिकनिक का सफर या हज या उम्रे का सफर अपनी असल से एक ही जैसा है। लेकिन ये हुरमत थी आजमाइश के लिए, कौन किस काम से रुकता है। अल्लाह ताला ने यहाँ यही बात बता दी जिसका तस्कर आगे फिर आ रहा है कि या युहल्लजीन आमनो, ए ईमान वालो, प्यार से अल्लाह ताला पुकारता है, आ जाओ मेरी बात सुन लो, मान लो। ला तक्तुलु सईद व अंतुम हुरम, मत तुम शिकार करो जबकि तुम एहराम की हालत में हो। यानी देखे कि वजह पहले बता दी है और हुक्म अब आ रहा है। असल में ये हुक्म आया तो उसकी वजह बाद में बतानी थी ना। यानी आप दोनों आयतों को अगर यूं कह सकते हैं कि अगर हम अपने जहन से सोचें तो आयत ऐसे होनी चाहिए थी कि पहले ये कह दिया जाता कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम शिकार ना खेलो जबकि तुम हुरम। हुरम के लफ्ज को फिर दो तरह से लिया गया, हुरम से मुराद हालत हराम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी भी, कि तुम हज या हरम की हद भी लिया गया। आपको पता है कि खाना काबा के इर्द गिर्द कई मील तक का इलाका जो है वो हरम का इलाका है, जिसके अंदर यानी वो सारी पाबंदियां होंगी जो हरम के अंदर जाके होती हैं। तो इससे दोनों ही मुराद है कि जब तुम एहराम की हालत में हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहां की गिरी पड़ी चीज को नहीं उठा सकते, वहां किसी को जानवर को भगा नहीं सकते, हाँ सिर्फ पांच जानवर जिसमें मुझी जानवर है, सांप है, चील है, कौवा है, इसी तरह जंगली चूहा है, इनको मारने की इजाजत है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं मार सकते। तो दोनों चीजें हैं, हालत एहराम में आप अभी रास्ते में ही थे, मदीना से भी निकले हैं, एहराम की हालत आ गई। यहाँ एक और हल्की सी बात बता दूं कि हमारे यहाँ एहराम का भी एक गलत ही तसव्वुर है। हम कहते हैं एहराम उस सफेद कपड़े को जो दो चादरों की सूरत में हाजी साथ लेके जाते हैं, वो एहराम नहीं होता। एहराम एक हालत का नाम है जो उस कपड़े को पहनने के बाद होती है। कपड़ा अपनी जगह कुछ नहीं है, आप उसको जिस कपड़े का मर्जी बना लें, उस पर भी बहुत सारे लोग बड़ी बड़े मुश्किलात करते हैं और उल्टे सीधे सवाल पूछ के फिर अपने लिए भी परेशान की हद में पहुंच चुके हो, तब तो बिल्कुल नहीं करना। वहां तो एहराम की हालत से अब निकल भी चुके हैं फिर भी नहीं करना हमेशा के लिए। लेकिन हुरम से मुराद अगर एहराम बांधे की हालत में, तो फिर तुम उस सूरत में भी शिकार नहीं करोगे। हाँ नहीं करोगे, नहीं करना चाहिए, अब क्या करो। अब देखिए कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता दिया गया कि एहराम की हालत में शिकार से हाथ रोक लो, ताकि जब तुम एहराम की हालत में नहीं होगे तो तुम्हें अल्लाह के हुक्मों से रुकना आ जाए। और अगर गौर से देखें ना, तो जो हुक्म एहराम की हालत में जानवरों के बारे में यहां दिया गया ना कि जानवर तुम्हारे हाथों से महफूज रहे, ये वही हुक्म है। जो दोहरा देती हूँ बात को, एहराम की हालत में शिकार हमसे महफूज हो गया। जब हम शिकार नहीं खेलेंगे तो जानवरों की जान बच गई ना, हमारे हाथ उनकी तरफ नहीं उठेंगे। तो जब एहराम खोल दो तो यही मामला इंसानों के साथ भी करो। करते हज और उमरे का एहराम बांध ले तो हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं हम किसी और दुनिया के अंदर चले गए, लेकिन जो ही एहराम खुलता है तो हमारी जिंदगी कितनी बेकायदा होती है। अफसोस की बात है कि आज हमने अपनी इबादत को बिल्कुल एक रिचुअल बना दिया, सिर्फ सुनी सुनाई चीजों को देखते हैं और किताब में पढ़ पढ़ के हज और उमरे करते हैं। मैं कह सकती हूँ कि अगर पूरे हज में से सिर्फ मैं यखाफ हो बिल गैब वाली कैफियत आ जाए और फमन्ने तदा ज्यादतियां करने से इंसान रुक जाए, तो वो से एक उम्रे का फायदा इंसान को शायद अगली पूरी जिंदगी में रहेगा। इसलिए इंसान को कभी भी अपने आप को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए। ये बहुत अहम चीज है। अल्लाह तुम इल्लत भी बता दी कि तुम्हें प्रैक्टिस कराई जा रही है कि इंसानों को भी चीर फाड़ना किया करो, उनकी उनकी गिबतें करके उनको ना तकलीफ दो। अब मिसाल है कि कोई कर लेता है, हो सकती है मजबूरी कोई। इस्लाम का हुसन ही ये है कि जहां किसी काम से मना किया जाता है फिर कभी हो जाए तो फिर उसका कफारा क्या है। तो इस आयत का अगला हिस्सा जो काफी तवील है, ये आप इसका टॉपिक लिख सकते हैं कि अगर कोई अहराम की हालत में शिकार कर ले। अब शिकार से मेरा यही तो नहीं ना कि हिरन मारा या कोई बकरी काटी, कोई और भी तो गलती से जानवर मार सकता है ना, कोई और इंसान के साथ मामला पेश आता है। तो कहा वमन कतल हो, और जिसने कत्ल किया उसको, हु से मुराद क्या है, सईद शिकार को, यानी जिसने जानवर को या शिकार को मार दिया। मिनकुम तुम में से, तुम कौन, मुसलमान, क्या करे, कैसे मारा, मुतअम्मितन जानबूझकर, अमद इसका रूट है, अमद इरादे को जानबूझकर इरादे से मारे। अगर किसी ने तुम में से इसको जानबूझकर मार दिया, अपनी मर्जी से मार दिया, तो क्या है, फजजाओ तो बदला है, यानी अब इसकी सजा, इसकी पेनल्टी, इसका कफारा क्या है, मिस्लु मा कतल मिनन नामी, उसी के बराबर मवेशी में से जिसको कत्ल किया। मसलन किसी ने हिरन मारा, अब हिरन के बदले क्या कफारा है, हिरन से मिलता जुलता जानवर जो है उसको जिबा कर दो, हिरन के बदले में हिरन नहीं मारना। देखिए शिकार अमूमन जंगलों में होता है और या सहराओं में ये होते थे, इनको जानवर मिल जाते थे। अब अगर किसी एक ने गलती से एक जानवर को मार दिया जिसको नहीं मारना था, और अमूमन ये जानवर बड़े नायाब होते हैं, जैसे आज के दौर में भी आप देखेंगे कि कुछ चीजें अल्लाह ने बहुत ज्यादा पैदा की हैं। फिर इस पे मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में महसूस हुई कि देखिए कि बकरी कितनी ज्यादा, जिनका गोश्त हम ज्यादा खाते हैं ना, उनकी परवरिश भी कितनी ज्यादा है। ये हर कुछ नहीं, थोड़े अरसे के बाद नए फिर और बच्चे दे देती हैं, एक वक्त में एक से ज्यादा बच्चे देती हैं। इसके बरक्स कुछ जानवर जो हैं तो हलाल, जैसे हिरन, नील गाय, हाँ, अब ये खा सकते हैं, लेकिन अमूमन लोगों का मिजाज नहीं। इनको अल्लाह ताला ने खूबसूरती के लिए भी पैदा किया, आंखों की ठंडक के लिए पैदा किया, तो इनकी नस्ल बहुत थोड़ी है। तो अब किसी ने अगर हिरन को मार दिया तो बदले में हिरन को नहीं मारेंगे, मिसलु मा कतल मिना नाम, उसी के वजन या उसकी कीमत या उसके हुज्जम के बराबर। इसमें बहुत इख्तलाफ है जिसकी हमें इस वक्त बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ना आप में से कोई शिकार पे जा रहा है और ना उसने जाके कुछ ऐसे काम करने हैं, लेकिन इसकी फिकी बातें बहुत सारी हैं। लेकिन खुलासा क्या, कुछ कहते हैं कि बिल्कुल उसी की शक्ल देखी जाएगी, उसका साइज देखा जाएगा, कुछ कहते हैं नहीं, उसकी कीमत देखी जाएगी। बाज दफा जानवर जो छोटे होते हैं वो ज्यादा महंगे, तो सारी बातों को मन से, और इसका फैसला कौन करेगा कि आपने हिरन मारा है तो अब इसके बदले बकरी आप जिबा करेंगे या गाय जिबा करेंगे। यहकुम बिही जवा अदल मिनकुम, इसका फैसला करेंगे दो साहिबे अदल यानी मोतबर शख्स तुम में से, दीन में भी सब समझदार हो, दुनिया में भी हो। क्योंकि आप देखिए जब सहराओं में या जंगलों में लोग जाके ये काम करते हैं, हर वक्त मौलवी साहब तो पास नहीं होते, हर बंदा आलिम भी नहीं होता, तो फिर वहीं बैठ के एक जरगा सा हो जाएगा, जो भी साहिब राय लोग होंगे उनमें से पूछा जाएगा कि ये देखो ये जानवर मेरे से कत्ल हो गया, अब तुम क्या करो इसके बदले में, मुझे बताओ मैं क्या करूं। वो बता देगा कि ये जानवर हाँ आला किस्म के, कुछ बड़ी महंगी नस्ल के होते हैं, कोई कम कीमत के होते हैं, तो बस इसका फैसला वो कर देंगे। अब वो फैसला कर दिया, मिसाल है किसी ने हिरन का शिकार किया तो फैसला हुआ कि एक बकरी जिबा करनी है। अब अगला सवाल है कहाँ करें, अभी करें कहाँ करें, तो उसका जवाब आगे आ रहा है कि हदयम बालिगल काबती, हदियन हदी का जानवर, कुर्बानी का जानवर, जो जा तो काबे की तरफ रहते तो इंतजार करेंगे, क्योंकि रास्ते में ये चीजें बिकती भी नहीं, वहां जाएंगे फिर वहां से एक जानवर खरीद के उसको जाके खाना काबा की हदूद में जिबा कर देंगे। ये है पहली चीज, इसकी डिटेल पे ना चाहिए, कोई जरूरत नहीं आपको। बस यहाँ एक छोटी सी बात लिख लें कि लफ्ज़ मुतअम्मिदन से कुछ लोगों ने कहा कि जानबूझ के कोई कत्ल करेगा उसका ये कफारा है, लेकिन अक्सर उलमा की राय ये कि जानबूझ के ना भी करे, कोई भूल से या गलती से भी कर दे तो फिदिया वाजिब होगा, दोनों सूरतों में होगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं जानबूझ के करे। आप देखिए अल्लाह ताला इंसानों को ट्रेन करते हैं कि किस तरह तुम्हारे एक छोटे से काम से तुम्हें उसकी बाद में जब बड़ी कीमत देनी पड़ती है तो आइंदा तुम नहीं करोगे। और मुझे ऐसे लगता है कि इस्लाम का मिजाज जो है ना, ये ख्वाहिशों पे पाबंदी लगाने वाला। अब क्या हुआ, पहली सूरत हो गई बकरी की कीमत, लेकिन बकरी नहीं मिलती हर जगह, तो नहीं इतनी होती, या कुछ और नई सूरत। तो दूसरी ऑप्शन आओ, सेकंड ऑप्शन या के साथ, कफारतुन ताम मसाकीना, खाना खिलाना है मिसकीनों को। अब सवाल है कितनों को, कितने, कुछ नहीं बताया। इसका अंदाजा कैसे होगा, उस बकरी की कीमत ली जाएगी जो जिबा करनी थी हरम में जाके। मिसाल है कि 2,000 रुपए की वो बकरी आती है, तो बस 2,000 रुपए का खाना लेके मिसकीनों को खिला दे। और तीसरी ऑप्शन, अतलु जालिका सियामन, इतने ही रोजे रखो। अब फिर सवाल पैदा होता है कितने रोजे रखे, मिस्कीन को नहीं खिलाते। देखिए या तो दूसरों को खिलाओ या खुद भी ना खाओ। ये है इस्लाम का मिजाज कि कुछ कीमत दो वो तुम अपनी गलती की। कह के बकरी देनी थी, बकरी नहीं दी, मिली नहीं, उतने पैसों का खाना लेके खिला दो। अब आपने 2,000 रुपए का खाना खिलाया, पता चला कि वो खाना खा लिया बिलफर्ज 20 मिस्कीनों ने, मिसाल ले लीजिए, ठीक है कफारा हो गया। आप कहते नहीं मिस्कीनों को नहीं खिला सकते, कोई है ही नहीं, हर तरह के हालात हो सकते हैं ना जिंदगी में। अब देखेंगे कि दौर गुजरते जाते हैं तो हालात बदल जाते हैं, बाज दफा भूखे लोग ज्यादा होते हैं, बाज दफा कोई मिस्कीन ही नहीं मिलता, तो क्या करो। औ अदलु ज़ालिका सियामा, ये सबसे मुश्किल है, या फिर उसी के बराबर रोजे रखो। कितने रखो ये नहीं लिखा, उन पैसों से जितने मिस्कीनों को खाना खिलाया था, मिसाल जो हम ले रहे हैं 20 मिस्कीनों को खिलाया था ना, तो फिर 20 रोजे रखो। अब देख रहे पेनल्टी सख्त होती जा रही है, एक बकरी, बकरी नहीं दी उसके पैसों का खाना, और हर मिस्कीन के एक दिन के बदले अपना रोजा रखो। क्यों भाई इतनी मुश्किलें क्यों, काली यजू का वबाल अमरी, ताकि चखो वबाल अपने काम का, सजा चखो। जैसे माएं बच्चों को ताना देती है ना, और खाओ, खाई थी ना आइसक्रीम, अब गले में दर्द है तो आराम से बैठो, मेरी बात नहीं मानी थी ना, अब वबाल पड़ रहा है। असल ये है इस आयत का नुकता, बाकी सारी तफसीलात के ऊपर ना जाएं, इस पे नजर रख लें कि जब दुनिया में इंसान को उसके किसी काम का वबाल आ सकता है, तो कल कयामत के दिन मरने के बाद, जहन्नुम में जाने के बाद, जब लोगों को उनके कामों के वबाल पे पकड़ा जाएगा तो वो कितना शदीद होगा। अफअल्लाहु अम्मा सलफ, जो हो चुका उसको अल्लाह ने माफ कर दिया। ये एक और खूबसूरती है इस्लाम की कि जिस चीज को तुमने पहले किया था अब नहीं पता था, उसको अल्लाह ने माफ कर दिया। जिसके ऊपर वाकई दिल कहता है कि ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि जब हम कोई बात सुनते हैं ना, उसके बाद फौरन दिल में ख्याल आता है कि अच्छा फिर पिछली जिंदगी में क्या हुआ। जैसे एक बहुत सारे मसाइल हम सुनते हैं तो हम कहते हैं हाय हमारी माए तो ये सारा कुछ करती थी, हमारी दादियां तो ये सारे काम करती थी, छोड़ दो। अफल्लाहु अम्मा सलफ, जो उन्होंने किया अल्लाह ने उनको देख लिया, तुम छोड़ दो। और अम्मा जो है ना, ये असल में अन और माँ था। हाँ लेकिन आज के बाद तुम सुन लो, वमन आद फयन्तकिमुल्लाहु मिन्हु, जो कोई फिर करेगा, अब बात सुन ली, हुक्म पता चल गया, मसला मालूम हो गया, अब अगर दोबारा करोगे तो फयन्तकिमुल्लाहु मिन्हु, फिर अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। और लफ्ज इंतकाम के अंदर बड़ी शिद्दत होती है, और क्यों लेगा, इसलिए कि वो उसका नाम है जुन्तकाम, वो इंतकाम ले सकता है, क्योंकि जब एक बंदा अल्लाह के हुक्म को जानते हुए ना माने तो फिर उसकी पकड़ तो जरूरी होगी, खो को ना तोड़ो। उहिल्ला लकुम सईदुल बहरी, आयत 96, फरमाया तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया शिकार पानी का, व ताआमुहू और उसका खाना, यानी सी फूड तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। किस सूरत में? एहराम की हालत में भी और गैर एहराम में भी, यानी ये वो चीज़ है जिसको गैर जबीहा तौर पर भी तुम खा सकते हो। मता लकुम, ये तुम्हारे फायदे की चीज़ है इसलिए हलाल की। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला बेलाग पाबंदियां नहीं लगाते, बस कह दिया, मैंने कह दिया। बस माओ को गुस्सा आता है ना, बड़ी अजीबो गरीब बातें कह के कहती हैं, बस चुप कर जाओ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं माँ हूँ, तुम तो नहीं हो ना, तुम्हें पता है कि मुझे पता है, मैंने कह दिया। अल्लाह ताला चाहे तो इस तरह का अंदाज इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, इसलिए कि वो अल आदिल भी हैं, अल हकीम भी हैं। कहा लोगों, इसलिए मैंने ये पाबंदी तुमसे उठाई है, मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी जरूरत है। वलिस सैयारती, और सब मुसाफिरों के लिए, यानी हज और उम्र के लिए जाने वाले जायज है। ये है वो आयत जिसकी बुनियाद पे हम फिर सी फूड दुनिया में किसी भी जगह तो खा लेते हैं। ऐसे लगता है ना कि अल्लाह ताला हम सबको दिखा रहा है कि देखो, अगर तुम्हें इतना ही शौक है गोश्त खाने का तो सी फूड खा लो, कहीं भी खा सकते हो, वो हलाल है। फिर सी फूड के बारे में जब बात आती है तो लोग पूछते हैं, अच्छा जी वो हम केकड़ा खा सकते हैं, अच्छा लॉबस्टर खा सकते हैं, अच्छा श्रिम्स खा सकते हैं। एक असूल लिख लें, सारी चीजों पर इंशाल्लाह फिट होगा। वो जानवर जो सिर्फ पानी में रहे, पानी से निकालते ही मर जाए, वो सी फूड के अंदर आएंगे, वो खा सकते हैं। किसी जानवर को खाना है, उसको पानी से निकाल के देख लें थोड़ी देर, जिंदा रहता है तो ना खाएं। ते हैं जो पानी में भी रहते हैं और बगैर पानी के भी जिंदा है, मिसाल दे दो, मेंढक, फ्रॉग, नहीं खा सकते। बस इस एक असूल पे सारी बातें आ जाएंगी, ये खाएं कि वो ना खाएं, नहीं खाएं तो ये नहीं खाएं। का खाओ जहां तक खाओ। वह हुर्रिम अलैकुम सैतुल बर्री मा दुमतुम हुरुमा, फिर तकरार की कि अब इससे ढील ना ले लेना, रुख्सत ना लेना, क्योंकि हमारा हाल क्या है कि कोई हाथ पकड़ा है तो हम बाजू पकड़ने लगते हैं, कि जब बात हुई अच्छा, तुम एहराम की हालत में सी फूड खा सकते हो, तो फिर ये ना समझना कि अब फिर खुश्की का शिकार भी हलाल हो गया। का नहीं, वो हुरमत अपनी जगह मौजूद है, वो नहीं खा सकते। कब तक? मा दुम तुम हुरुमा, जब तक तुम रहो एहराम में। दुम तुम दामा या दीमु से, ये वही है जिसको उर्दू में कहते हैं कायम और दायम, दवाम का लफ्ज भी इसी से है। दुम तुम हो, पीछे दुम रह गया, यानी जब तक तुम रहो हुरुमा एहराम की हद तक शरून, और अल्लाह से डर जाओ जिसकी तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। आज दुनिया में कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अल्लाह की कानून शिकनियां करो, नाफरमानियां करो, हलाल को हराम बनाओ, हराम को हलाल बनाओ, कोई तुम पे उंगली नहीं उठाएगा। कल जब अल्लाह के सामने जाओगे तो उसको खूब पता है कि तुम क्या करके आए हो, कैसे काम करते थे। तो लिहाजा इन बातों पे ज्यादा बहस ना करो, बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानो। यहाँ पे ये टॉपिक पूरा हुआ। कुछ चीजें जो आपको शायद फायदा दे देंगी, उनको अब मैं पूरी तीनों आयतों के नाते में से देखूं। पहली बात यह है कि जानवर खाने के काबिल होते हैं, कुछ नहीं खाए जाते, यानी कुछ शिकार जिस फन के लिए भी करते हैं वो जानवर नहीं खाए जा सकते। तो सईद के लफ्ज में दोनों आएंगे, माकूलात और गैर माकूल। माकूल कहते हैं जिसको खाया जा सके, वही जैसे बकरी और हिरन वगैरह, और गैर माकूल है जो हराम है जिनको खा नहीं सकते। दोनों के शिकार पे यही सजा होगी या यही काम आ जाएंगे। फिर दूसरी बात ये है, लेकिन शिकार का गोश्त खा सकते हैं। आपको मैंने वाक्या सुनाया, आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है, तो इसकी दलील इसी आयत में कि ला तक्तुलु सईद वअंतुम हुरुम है। ये नहीं कहा कि ला ताकुलु सईद, खा सकते हो, कर नहीं सकते। फिर इसके बाद ये कि ये जो जवा अदलिन की बात थी, क्या शरायत है कि किससे पता चलेगा कि कोई बड़े अदल वाला है, क्योंकि हर एक अपने आप को अदल वाला कहता है। इसकी चार शरायत अमूमन हमें मिलती हैं। नंबर एक, फराइज को अदा करने वाले हों, यानी नमाज रोजे के पाबंद लोग हों। दूसरी शर्त, कबीरा गुनाहों से बचने वाले हों। तीसरी, सगीरा का इसरार ना करें, यानी छोटे गुनाह भी जान जान के बार बार ना करते रहें। और चौथी यह है कि बंदों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आने वाले हों, हकूक देने वाले फिर हजम बालिग अल काबा पे बात हुई, तो चाहे तो हरम के अंदर से यानी वहीं से जानवर खरीदा जाए हरम की हदूद में जाके, या बाहर से इंपोर्ट किया जाए, दोनों सूरतों में हो जाएगा। अब यहां से देखिए कि जुर्माने की बात समझ आ रही है। पता क्या होता है कि इंसानों को जब किसी चीज में जरा रुख्सत दी दी जाती है ना, तो वो फिर ढीले हो जाते हैं। ये आयतें सारी जुर्माने को भी साबित करती हैं। फाइन, जब लोग अपना काम वक्त पे ना करें तो उनको फाइन करा जाए, तो मेरा ख्याल है कि उसकी दलील इस आयत से मिलती है। और फाइन के डर से किसी काम का करना, वो तब्दीली नहीं लाता इंसानों के अंदर, वो तकवा नहीं पैदा होता जो अपनी खुशी से करने का। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे या जहाँ भी कभी भी कोई काम हुआ, मैनेजमेंट के नाते से कई बार कई चीजें सामने आती हैं कि इस काम आया जाए। और दूसरी जो चीज जो इन आयतों में मुझे फील होती है, जो मेरे नजर हमेशा रहती है, वो क्या है कि फिर वो क्या पाबंदी है। पुलिसमैन सामने खड़ा है तो आपने अपनी बेल्ट बांध ली, और पुलिसमैन नहीं है तो बांधी नहीं है। तो यहां से अपने लिए नियत करें, जिंदगी में पाबंदियों का शिकार हो के कोई काम मत करें, सारी जिंदगी आदत रहेगी। हमने इंशाल्लाह वो ग्रुप डेवलप करना है, वो गिरोह इंसानों का पैदा करना है जो अपने शौक से अपनी जिम्मेदारियों से नेकियां करने वाले हों, जो बढ़ के ना करें नेकी, मत करें ज्यादा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का तो एहसास रखें। क्योंकि हमेशा कोई पीछे चलने वाला नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ पीछे पढ़ पढ़ के उसको नहलवा लेगी, उससे अच्छा काम करा लेगी, लेकिन जब बंदा बड़ा होता है तो उसको खुद करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला इन आयात से हमें यही सबक दे रहे हैं कि लोगों अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो। अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर टोका जाए, तुम बड़े और अकल सबको अल्लाह ने दी है। जरूरी नहीं होता कि किस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने से डरने वाला और अल्लाह ताला की लगाई हुई जो पाबंदियां हैं उनको निभाने वाला बना दे। आयत 97 से लेकर 100 तक एक ही टॉपिक है, और बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। दुनिया में अमनो अमान कायम करने के चार जराए पे बात होगी। टॉपिक मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप फिर इसी सोच के साथ लेंगे। बहुत आसान आयतें हैं। ये सूरत मायदा का वो हिस्सा इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, खासतौर पे आगे जो इसी लेसन में कुछ और आयतें आने वाली हैं, जिनको आप फ्रस्ट्रेटेड और घबराहट वाले जहन से सुनेंगे तो कभी समझ नहीं आएंगे। आगे आयत आएगी। सबसे मुश्किल आयत है मानी आराब और तर्जमे के एतबार से, और तफसीर के एतबार से सबसे आसान है आज का सबक। सिर्फ आपको मैं आयतें बयान कर दूँ कि तो अल्हम्दुलिल्लाह बात वाजे हो जाएगी, इसमें कोई डिटेल्स नहीं है। तो इन आयतों को सुनते वक्त बिल्कुल आयत के साथ साथ चले, ये बात खुद ही समझ आएगी। बस दफा एक बात सुनते वक्त जहन में सवाल आता है तो उसका जवाब उससे अगली आयत में होता है। तो चलिए देखते हैं आयत 97 से। जालल्लाहुल काबतल बैतल हराम, बना दिया अल्लाह ने काबा जो बैते हराम है लोगों के क्याम का बायस। साथ साथ लफ्जों की थोड़ी वजाहत करती जाऊं। काबा का जो लफ्ज है ना, ये काब से है, काफ आइन बा। काब कहते हैं उभरी हुई चीज को, ये टखनों को काबेन कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं इलल काबेन, तो उभरी हुई चीज, उभार। औरत का जो सीना उभरा हुआ होता है उसके लिए भी यही लफ्ज आता है। तो इसमें काबा से मुराद उभरी हुई चीज है। इसे मुराद क्या है? खाना काबा। ये किस तरह है? ये चकोर है, मकत नुमा है ना। अरबी जुबान में काबा उस मकान को कहते हैं जो मुरब्बा हो, चकोर के मानों में लिख लें, जिसके चारों एंगल बराबर। बनाया हुआ घर भी ऐसा ही था जिसको वहां के लोग काबा कहते थे, लेकिन उसका नाम क्या था? काबा यमानिया, यमन की तरफ था ना, यमानिया था। इसीलिए फिर ये जो असल काबा है ना बैतुल्ला, तो इसको फिर काबतुल्ला या बैतुल हराम कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने बना दिया, यानी अल्लाह ने बना दिया काबा जो बैतुल हराम है, यानी वो काबा नहीं बल्कि ये काबा जिसको लोग बैतुल हराम के नाम से जानते हैं, क्या बना दिया। अच्छा लफ्ज हराम को भी समझ लें, कई लोग नहीं समझते। हमारे यहाँ लफ्ज उर्दू में हराम बड़ा बुरा समझा जाता है ना, तौबा तौबा, लेकिन जब आप कहते हैं मस्जिद हराम, बैतुल हराम, तो कहते हैं तौबा ये क्या हो गया। तो क्यों कहते हैं मस्जिद हराम? आपको पता है ना मस्जिद हराम किसको कहते हैं? ये सारी फर्क चीजें हैं। बैतुल्ला क्या है? वो काला कमरा जिसके इर्द गिर्द तवाफ है, और मस्जिद हराम के वो पूरी मस्जिद जो चार दीवारी में आती है और ये बढ़ती जाएगी, वक्त के साथ आप इंशाल्लाह जो लोग इस सच में जाएंगे अच्छे से बिल्कुल मुख्तलिफ देखेंगे। तो ईमेल्स में वो सारे स्केचेस लोग भेज रहे हैं और उसको देख के वाकई दिल चाह रहा है कि फिर जाके देखें। अब पूरी और एक्सटेंशन होगी, हर साल कुछ ना कुछ आप देखते हैं बढ़ती है। तो ये जो बाउंड्री वॉल होती है ना, इसको मस्जिद हराम कहते हैं। फिर उसके बाद वो हिस्सा जहां से आप एहराम बांधते हैं, जो लोग जद्दा से जाते हैं तो एक जगह पे आपको एक ऐसा रास्ता बना हुआ दिखता है कि इस तरह की शक्ल है, रहल बनी हुई और उसके ऊपर कुरान है, वो जगह तक काबा के अंदर आती है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक वक्त आएगा कि काबा की हद यहाँ तक आएगी, इतना बड़ा हो जाएगा हरम, इतने लोग आने वाले होंगे। और आप देख रहे हैं कितनी तेजी से हो रहा है, जो एक साल बिल्डिंग बनती है वो 4-5 साल में डिमोलिश करके उसके अंदर दूसरी बनती है। तो यहाँ बैतुल हराम से मुराद अल्लाह ताला ने वो जगह रखी जहाँ पे खाना काबा था और उस काबा के इर्द गिर्द लोग रहते थे। जब अल्लाह के नबी का दौर था तो बस यही था, मस्जिद की चार दीवारियां तब तो बनी है ना, बस वो तुर्कों का दौर आया, वो छोटी छोटी जो डोम बने हुए हैं पहले बरामदे जब वो तुर्कों के दौर के हैं, उसके बाद से लेके जितनी आगे ये सारी इस वक्त के सऊदी हुकूमत है उसकी एक्सटेंशन है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने एक काले कमरे को, एक छोटी सी बिल्डिंग को लोगों के क्याम का जरिया बना दिया। लफ्ज क्याम आप पीछे गुजर चुका सुन चुके, ये कवाम से है, अर्रिजालु कवामून अलन्निसा, तो क्याम और कवाम इस मस्तर है। हर उस चीज को कहा जाता है जो किसी चीज के क्याम और बका का जरिया हो। मर्द को कवाम कहा गया तो समझ आ गई थी ना बात, कि मर्द अपने घर वालों के नान नफके का जिम्मेदार है। तो यहाँ क्यामल लिन्नास से मुराद क्या है कि काबा जो है वो इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के क्याम और बका का जरिया। अब इसके ऊपर क्या है, इसको तीन तरह लिया गया। अगर नास से मुराद सिर्फ उस काबे की हद के अंदर रहने वाले लोग लिए जाएं, खाना काबा के अंदर, तो मुराद क्या होता है कि ये काबा ही तो है एक छोटा सा कमरा जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ आके रहते हैं, इनकी तिजारत चलती है, इनकी मंडियां लगती हैं। और शुरू से ये बात थी, अरबों की इकोनॉमी चलती ही इस काले घर की वजह से है। सच है, वहां कुछ बनता है? बहुत कम। कुछ उगता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप देखिए कि दुनिया की कितनी अमीर मुमलिकत में शुमार होती है क्योंकि इस काले घर की वजह से बरकत मिली। ये अल्लाह की बड़ी रहमत होती है, किसी जगह अल्लाह अपने दीन के लिए किसी जगह को ना सिर्फ ये कि लोगों की हिदायत का जरिया बना दे, बल्कि वहां के लोगों के कयाम का जरिया बन जाता है। खाना काबा जैसे वहां की मईशत का जरिया बन गया था, इसी तरह आप देखिए कि दुनिया के मुख्तलिफ हितों को आप देखें। मिसाल है कि आप कहीं भी रैंडम काम करते हैं ना, दीन का के नाम पे नहीं आती, लेकिन जहां एक मरकज बन जाता है, जहां लोगों को एक बिल्डिंग दिखती है, फिर उसके नाम पे आप देखिए कि वहां बहुत पैसा जमा हो जाता है। जितने दीनी इदारे मस्जिदें बनी है, ये इसकी दलील है कि वो जगह बन जाती है, फिर लोग खुद ही पैसा लगाते हैं, उनको पता होता है इनकी जरूरियात है, जिम्मेदारी है, फिर लोग बढ़ते जाते हैं, एक्सटेंशन बढ़ जाती है। या कभी कभी ऑपोजिट भी होता है, जगह बहुत बड़ी बन जाती है और लोग नहीं होते। लेकिन यह इशारतन बात मिल रही है कि अल्लाह ने जिस तरह खाना काबा को वहां के लोगों के लिए एक क्याम का जरिया बनाया, लोग वहां इकोनॉमी को चलाते थे, सब कुछ करते थे, तो एक मुराद तो नास से हुआ जो लोग वहां रहते थे। फिर दूसरा मानी नास से क्या होगा, अहले अरब, अरब के लोग। तो के लिए ये कयाम कैसे, कुरैश ईला फिहिम रिहलत शिताई व सईफ फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। इसमें पहली चीज आ गई, वो रब जिसने भूख में खिलाया, व आमनहुम मिन खौफ, खौफ में उनको अमन दिया। ये दूसरा मानी है कि इस घर की हुरमत शुरू से रही, इसकी वजह से लोग जो उस दौर में लड़ाई मार कुटाई में इतने माहिर थे कि हर वक्त लड़ते थे, लेकिन जो ही काबे की हदूद में आते थे तो नहीं लड़ते थे, ये अमन और चैन के क्याम का सबब बना। ये दूसरा मानी है। और तीसरा मानी लीजिए नास के लफ्ज में पूरी दुनिया के लोग, वर्ल्ड के लोग, तो इससे मुराद वो मानी बनता है जो अल्लाह के नबी सल्लम की अहादीस से मिलता है कि ये दुनिया उस वक्त तक कायम है जब तक काबा कायम है। आपने फरमाया क्यामत के करीब एक हबशी छोटा टांगों वाला, यानी उसका पूरा ये काबा गिर जाएगा, एक वक्त आएगा। काबा का गिरना कियामत के आने की दलील बन जाएगा। काबा खत्म तो घर खत्म। और ये वो वक्त होगा कि जब एक शख्स भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कुरान सफ़ों से मिट जाएगा, हाफिजों के सीनों से निकल जाएगा। जब हम नेमतों की कदर नहीं करते ना, तो वो छिन जाती है। जब लोग सिर्फ हाजी बनने के लिए हज करेंगे और हज की रूह से महरूम हो जाएंगे, तो ये हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा मामला होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये घर कैसे है। हजरत इब्राहिम की दुआ की बरकत थी जो उन्होंने मांगी थी। हजरत सूरह इब्राहिम में आता है, फजअल अफिदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरजुकहुम मिनस्समरात, कि अल्लाह तो लोगों के दिल इस घर से जोड़ दे और इसकी तरफ फल खिंचे आए। तो आज भी देख लीजिए कि नॉन मुस्लिम भी हैरान ही होते होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं हरम की तस्वीरें देखती हूँ और उसको एक देख के दिल में एक रिक्कत भी तारी होती है, एक जलाल का एहसास होता है। दिल हिल जाता है। मैं सोच जमा होता देखकर घबराने लगते हैं, तो इनका दिल तो वाकई टूटता होगा। इसीलिए अल्लाह ने वहां इनका दाखिल ही मना कर दिया कि कोई ये ना कहे नहीं सारे मिले हुए हैं, वो सब मुसलमान है, पूरी ताकत है, स्ट्रेंथ है। तो इसको अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए महफूज रखा। दुनिया कायम है इस काबा की वजह से, अमन है और चैन है। और इसी तरह आप क्याम के लफ्ज को देख लें, तो यहाँ से हिदायत के सूते भी तो फूटे। ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार इसी काबा की हदों के अंदर से तो उठी। इसी काबा से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो लिहाजा ये वो बात है कि यहाँ से अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत का इंतजाम करना था। अबदी चश्मा और अल्लाह के नबी की पैदाइश की जरिया था। तो यहाँ हमने कयामत लिन्नास देखा वजह है। इसकी वजह से रिस्क भी मिल रहा है, इसकी वजह से अमन और चैन भी है, और इसी की वजह से लोगों को दुनिया में जीने का हक है। मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर कोई एक शख्स भी किसी साल हज पे ना आए, यानी अल्लाह ना करे कोई ऐसा साल आए कि एक बंदा भी हज के इरादे से ना आए, तो उसी साल दुनिया फिर तबाह कर दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने उस हरम को खत्म कर दिया, उसको सही इस्तेमाल नहीं किया। चलिए दूसरी चीज जो दुनिया के अंदर क़याम का जरिया है वो क्या है, वह शहरुल हराम, हुरमत का महीना। आगे आता है अशहरुल हरम, अशहर जमा है, शहर वाहिद है। यहाँ एक महीना हुरमत का मुराद लें तो मुफस्सरीन इसको जिलहज कहते हैं। कि दूसरी चीज जिसकी वजह से वहां अमन चैन है, जहां लोगों को सुकून मिल रहा है, वो हुरमत के महीने। अरब 4 महीने हुरमत के ऐसे थे कि जिसमें वो मुतमईन होते थे कि अगर हमने अपना कोई कंटेनर मंगाया है तो वो खैरियत से हमारे घर पहुंच जाएगा, हमारे काफले आएंगे तो रास्ते में ही लुटेंगे नहीं। और वो सिर्फ 4 महीने थे, जिनको हुरमत के महीनों के नाम से हम जानते हैं, ज़ीकात, ज़िलहज और मुहर्रम और रजब। पूरे साल के 4 महीनों में सिर्फ कारोबार करते थे और 8 महीने उनकी दुकानें बंद रहती थी। एक ऐसा दौर हुआ कि मैंने कराची में अपने मुल्क में जब ये आयतें पढ़ाई, वो ये हालात थे कि जब हर आए दिन हड़ताल थी, तो मुझे उस वक्त ये आयत समझ आई कि ये होती है बेचैनियाँ। कि किसी ने एक पूरे साल के दिनों का भी बताया था कि पूरे साल में कराची शहर में शायद 4-5 महीने ही टोटल कारोबार होता है, और 6-7 महीने दुकानें किसी हंगामे की वजह से, किसी हड़ताल की वजह से बंद होती हैं। ऐसे लगता है कि इंसानियत घूम के फिर उसी चीज़ की तरफ आ गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हुरमत के महीने भी इंसानियत क़याम के रास्ते में। काफिर क्यों लेंगे, उनको लग क्या लगे, हमारा क्या हाल है। मुसलमानों की आपस की खत्म होती, घरों की, खानदान की, दूसरों की, इर्द गिर्द की चीजें, ये सब चीजें जरूरत है इस बात पे कि लोगों को पता चले कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें लोगों के लिए पेश की। और इसके बाद हुक्म भी दिया कि ऐसे मौके पे तुम वो काम ना करो कि जो के दूसरे कर रहे हैं। तीसरी चीज जिसकी वजह से दुनिया का अमन और चैन कायम है, वल हज्या, और वो जानवर जो काबे की न्यास का हो। अरब लोग शिकार के चूके आदी थे, लेकिन जिस जानवर के गले में वल कलायद में अगला लफ्ज आ रहा है, किसी जानवर को अल्लाह के नाम पे जिबा करना होता था ना, तो उसके गले में एक खास पट्टा डाल देते थे। जैसे आज भी आप देखते हैं कुर्बानी के जानवरों पर रंग लगे होते हैं, कोई नाम से हम हज और उम्रे के लिए जाने वाले सूटकेसों की करते हैं, नए खरीदते हैं। हा? तो इस तरह से इन चीजों को वो अपनी जगह रखते थे, उनका एहतमाम करते थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी चीजों की वजह से इनको अमन और चैन मिलता है। हदी हदिये से है, हदिया तोहफे को कहते हैं। खास तौर पे वो कुर्बानी जो हरम की हद में जाके की जाती थी, उसका ये लकब कह लें, उसका प्यार का नाम है कि वो हदी है। हम भी सारे कुर्बानियां करते हैं ईद उल अदहा के मौके पे या आगे पीछे, लेकिन हदी खास तौर पे वो था जिसको अल्लाह के घर में जाके ज़िबह करना होता था। तो अगर कोई शख्स सफर कर रहा होता और उसके साथ हदी का जानवर होता तो लोग फिर उस शख्स के ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। तो यहाँ भी क़ियाम अमन का एक ये सबब बनता। कलायद का लफ्ज़ कलायद कलादतुन की जमा, किल्दा, ये गले का जो हार होता है ना, गुलूबंद चोकर, उसी को चोकर को शायद गुलूबंद कहते हैं, उस चीज को कलायद कहते हैं। होता क्या था कि जाहिलियत के दौर से अरब लोगों की ये रस्म थी कि जो शख्स हज के लिए निकलता तो अपने गले में एक हार बतौर अलामत के डाल लेता कि लोग इसको समझ जाएं कि ये हज के लिए जा रहे हैं, इसको तकलीफ ना दें। इतनी देखे खराबी पैदा हो चुकी थी। तो इसी तरह जानवर के गले में भी डाल देते थे, तो फिर ऐसे लोग भी लोगों से मुतमईन हो जाते थे। आप गौर से देखें ना, तो हदी, कलायद और अशहर और हुरम तीनों चीजें, इनका ताल्लुक फिर हरम से ही है। तो पता क्या चला कि दुनिया में अमन का पैगाम अगर उठेगा तो इसी हरम से उठेगा। इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, इस्लाम ही लोगों को अमन देगा, शर्त कह के मुसलमानों को पहले इस्लाम समझ आ जाए। असल ईमान तभी आएगा जब पता चलेगा। इसलिए हम मुसलमानों पे इस बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि दीन का खूबसूरत रुख लोगों के सामने पेश कर दें। फिर कहा कि ये सारी पाबंदियां, सारी बातें क्यों हैं? जालिकली ताला करो हुआ था पाबंदियां, इसलिए क्या तुम जान लो कि अल्लाह जानता है आसमानों और जमीन की हर चीज को। वन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और ये कि अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानता है। यानी अल्लाह ताला ये सारी बातें क्यों बताता है? ताकि तुम्हारा इस पर ईमान हो जाए कि अल्लाह ताला को ये सब कुछ पता है। अगर कोई अमन पैदा कर रहा है या उसमें फितने पैदा कर रहा है, नाम लेता है पीसफुल लोगों का और सारी दुनिया का टेररिज्म वहीं से उठता है, ये फिर अल्लाह को पता है। असल बात यह है कि तुम अल्लाह पे बात रखो। फिर आगे बड़ी प्यारी आयत में बता दिया, एलमो, जान लो, इल्म हासिल करो। देखिए, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया, ये अमर है, इंटरोगेटिव है। हुक्म है, नहीं दे सकते। किस बात का इल्म रखो? कि अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। वअन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और वो खूब बख्शने वाला और मेहरबान है। एक आयत में दो मुख्तलिफ चीजें, मुझे ऐसे लगता है जैसे गर्म और ठंडा इकट्ठा कर दिया, एक ही जगह दोनों चीजें आ गईं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी दोनों सिफात बहुत गालिब है। कैसे सख्त अजाब वाला है? कि जो अहकाम अभी तुमने सुन लिए हलाल और हराम के, वो बिल्कुल अल्लाह की हिकमत से हैं, मसलियत के तहत हैं। इनको मानोगे तो फायदा होगा, इनकी खिलाफ वर्जी करोगे तो सख्त वबाल आएगा। और अगर किसी से भूल से, गफलत से कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह फौरन नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो गफूर रहीम है, तौबा करने वाला, होने वालों को माफ का खुलासा, जो बिल्कुल इस आयत के ऊपर फिट आती है कि आपने फरमाया कि अल्लाह की रहमत का अगर लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह तआला कितना रहम वाला है, तो कुफार भी अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगा लें। ये मानेंगे कि हम गुनाहगार हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन कहेंगे कि वो ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। और अगर अल्लाह के गज़ब, अल्लाह के कहर का हाल ईमान वालों को पता चल जाए तो वो कभी जन्नत की आस न लगाए। तो बात यह है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात से कुछ भी नहीं, हमारे रवैये मुरतब करवाते हैं कि वो हमारे साथ कैसा मामला करें। नाफरमानियाँ करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं, खूब पूछेगा, और अगर डरते डरते कोई गलत काम हो जाता है, तौबा करते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो माफ कर देगा। मा अल रसूल इल्ल बलाग, बस रसूल के जिम्मे तो बात को पहुंचा देना है। यानी रसूल का काम मनवाना नहीं, पहुंचाना है। यही बात मुबल्लिगीन को भी अपने सामने रखनी है, दीन की दावत देने वालों को बात को पहुंचाना है, मनाना नहीं, बस इनके सरों पे निकाब रखवा के जाएंगे, नहीं माल रसूल इल्ल बला, बात पहुंचा दो, बात पहुंची है कि नहीं ये देखो, कोशिश करो कौलन बलीगा की, लोगों के अंदर इस चीज का एहसास पैदा हो जाए कि हमें ये बात पहुंच गई है, अब हम अमल करें, बस जबरदस्ती ना करो, क्योंकि ला इकराह फिर दीन, अल्लाह के नबी ने कभी डंडा लेकर पीछे नहीं लोगों के पड़े, आप बात पहुंचाते थे और कभी आपके अंदाज में शिद्दत नहीं देखी गई, क्योंकि आपकी बात थी ही इतनी बलीग कि खुद बखुद बात समझ आती थी, लेकिन जब हमारी बात इतनी मुश्किल हो जाती है, हाँ, लोगों के लेवल से ऊंचे चली जाती है और बाज़ दफा एक्सट्रीम पे चली जाती है, हद पे जाके हम दीन का फिर मुश्किल होती है। वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो, क्या जाहिर करते हैं और क्या छुपाते हैं, किन बातों को धोखे के साथ जायज कर लेते हो जो जायज नहीं होती, और किन चीजों को बस नफ्स की तरगीबात की वजह से अपने ऊपर हलाल कर लेते हो, अल्लाह ताला को खूब पता है हर चीज उसके हाथ में। बाकी रह गई बात, क्या नबी आपने तो सिर्फ बात पहुंचानी है, दैट्स इट, जो पहुंचा रहा होता है ना उसके दिल में एक शौक होता है और फितरी शौक है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात पहुंच जाए, बड़ा सा मजमा जमा हो जाए, यही ख्वाहिश हो सकता है कि अल्लाह के नबी के दिल में भी थी कि अबू जहल भी आ जाए, अबू लहब भी आ जाए, उतबा शैबा रबिया सारे आ जाए, तो अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं कुल, कह दीजिए ए नबी आप कहें ये नापाक, वलौ आजबक कसरतुल खबीस, अगरचे आपको भली लगे नापाक की कसरत, एक माना तो इसका वही बना जो पीछे से चल रहा है कि बहुत सारे गंदे मिजाज के लोग आपकी बात पे जमा हो जाएं और दीन में इतनी तावीलात कर लें कि लोग कहें कि अब समझ नहीं आता कि असल दीन कौन सा है, थोड़े से तैयब लोग आपको पाबंद करने वाले रोक लेने वाले हैं वो बेहतर है, 313 1000 से बेहतर थे, क्योंकि वो 313 इखलास के सबूत दे के कुर्बानियों के मरहले से गुजर कर अपने आप को कुंदन बना चुके थे। अगर अल्लाह के नबी अपने दीन को थोड़ा सा अमेंडेड दीन कर देते, अमेंडमेंट का जैसे कोई कानून की शिक आती है ना तो उसमें फिर बाद में अपील आती है, इसमें थोड़ी रुख्सत कर दें, निकाल दें इसको, मसले को आसान कर दें, अल्लाह के नबी के पास 13 साल में जो मक्का का दौर था इतनी रिक्वेस्ट आई मक्का वालों की तरफ से कि थोड़ा पैगाम को ढीला कर दें, थोड़ा लाइट कर दें, फिर देखें कितने लोग आते हैं, करके देखें, अल्लाह के नबी बस एक दिन आप हमारे बुतों को पूज लें, हम 1 साल आपके बुतों को पूजेंगे, शुरू हुए थे एक एक दिन पे, तुम एक दिन हम, एक दिन तुम पूजो हमारे लात मनात उज्जा को, एक दिन हम तुम्हारे खुदा को पूजेंगे, एकदम ख्याल आता है वो हम तो इनके पूजेंगे, हम तो सिर्फ 313 है मिसाल है, लेकिन ये अगले दिन जब हमारे सुनेंगे और हमारी बात सुनेंगे और हमारे साथ हजर उमरा करेंगे तो ये तो लाखों है, क्योंकि हर दौर में खबीस चीज ज्यादा होती है, ये फितरत का असूल है, आप देखिए कि दूध के नीचे जैसे लस्सी होती है ना छाछ बहुत सारा है, मक्खन थोड़ा सा होता है, थोड़ी आएगी, दरख्तों पे फल जो लगता है फूर कितना लगता है लेकिन एंड पे थोड़ा होता है, ये फितरत का असूल है कि जो खालिस चीज है वो थोड़ी होती है, लेकिन जो इस थोड़े को बढ़ाने के शौक में थोड़ा ना खालिस मिला ले तो समझ लीजिए कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह से तकवा चाहिए, हर उस बंदे के लिए इसमें पैगाम है जो सिर्फ लोगों को जमा करने के लिए हर वो बात पेश कर दे जिसको लोग पसंद करें, आज के दौर में ये भी ठीक है, पूरी बात बयान करे और एंड पे के नहीं लेकिन आज के दौर में नहीं, तुम्हारे लिए यहां रहते हुए वहां रहते हुए, ये कब होता है जब दिल में अल्लाह का तकवा नहीं रहता और जब नफ्स उजब का शिकार होता है, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, ये भी तकब्बुर है, बहुत बड़ा फितना होता है, ज्यादा लोग आ जाए, देखिए मोमिन के दिल में ये हिरस रहनी चाहिए कि ज्यादा लेके आप पर मैं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ ये काम कर रहे हैं, कि हमारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि इस शहर में से, मिसाल है कि अगर आप यहाँ 100 बैठे हैं तो यहाँ 200 हैं, क्या मतलब 100 के बाद 200 का आना खबीस और तैयब का फर्क होगा, ये मतलब नहीं है इसका। हिरस तो रहनी चाहिए, ये तो अल्लाह के नबी के दिल में इतनी ज्यादा थी कि दो बार कुरान पाक में आता है कि नबी आप तो अपना सीना हलकान कर लेंगे, फला अल्लाह का बाकी नफ्सा का अला आसारी लम यू मिनो बिहाजल हदीस या सफा, कि आप तो अपना सीना छलनी कर लेंगे, खोलते रहते हैं आप हर वक्त इस हाल में कि लोग क्यों नहीं दीन पे आते, ये तड़प तो रहनी चाहिए। मैं कहती हूँ 200 की बात करते हैं, इस हॉल में 2000 लोग भी आ जाएंगे वो फिर भी थोड़े हैं, क्योंकि इस शहर में कई हजारों क्या कई लाखों मुसलमान मौजूद हैं। 5000 भी इधर अल्लाह के हुक्म से आएंगे तो वो थोड़े ही होंगे उनके मुकाबले में, लेकिन ज्यादा को बुलाना पैगाम को बदलने के लिए ये जायज नहीं। जिनका जिक्र आगे आ रहा है, कुफारे मक्का ने दीन में कई इजाफे किए हुए थे, तो अपने पैगाम को नहीं बदलना। वलो आजबका कसरतुल खबीस, क्या अल्लाह के नबी को खबीस की कसरत पसंद थी? नहीं, मुराद यह था कि आपका दिल चाहता था कि हर बंदा दीन पे आ जाए, अच्छा और दूसरा बुरा सब आ जाए, अच्छे और बुरे इंसान भी आ जाए, फिर इसमें अमाल और अखलाक है। इस एक लफ्ज को असल में बुनियाद बनाया गया अगली आयतों की, कि जब लोग दीन के अंदर इजाफे कर लेते हैं और मनमाने काम भी, मशकूक नेकियां भी, जाली किस्म की नेकियां भी ले आते हैं और कहते हैं ज्यादा काम कर रहे हैं नेकी का उससे बेहतर है कि सुन्नत के मुताबिक काम कर लो। कल कह देना कि अल्लाह फलाह ने कहा था करो, लेकिन मुझे शक था कि ये ठीक है कि नहीं, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि गलत करने से बेहतर है थोड़ा कर लो, जो है वो ठीक कर लो। देखिए आपको भूख लगी हो और आपके सामने दो नेक हैं जो आपको यकीन है कि बिल्कुल अच्छे हैं, प्योर हैं, तैयब है, मजे का खाना है, और उसके साथ ही दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी डिश हो जो खाने की भरी हुई हो, लेकिन आपको शक है कि इसमें कुछ छिपली गिर गई थी और वो निकाल दी गई या कॉकरोच फिर गया, इंग्रेडिएंट्स की तो बात ही नहीं करती ना, सिर्फ इस जाहिरी चीजों को देखें, आप क्या करेंगे? वो दो तीन लुकमे खाएंगे या वो डिश में से खाना खाएंगे? दो तीन लुकमे खाएंगे। तो असल चीज प्योरिटी है, इंसान अच्छे बुरे हों, आमाल और अखलाक अच्छा बुरा हो, खाने पीने की बातें हो, अमल की बातें हो, हर वो चीज इंसान को अच्छी लगती है जो बिल्कुल खालिस हो। इस आयत का एक खास शान नजूल है और इसको सुनते वक्त जरा आप इमेजिनेट कर सकते हैं कुछ चीजों को। कहते हैं कि जब इस्लाम में शराब को हराम किया गया और इसकी खरीदो फरोख्त को ममनू किया गया, तो एक शख्स जिसका शराब बेचने का काम था, इसने इसके जरिए से कुछ माल जमा कर रखा था, कभी ऐसा यार उसके बाद कुछ माल जमा हो चुका होता है, अल्लाह के नबी सल्लम के पास आया, सवाल किया कि अल्लाह के नबी, ये माल जो शराब की तिजारत से मेरे पास जमा हुआ है, क्या मैं इसको किसी नेक काम में खर्च कर दूं, यानी कि मस्जिद बनवा दूं, कुछ चंदा दे दूं, तो क्या मुझे इसका कुछ फायदा होगा? अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसको हज या जिहाद वगैरह में खर्च करोगे तो वो अल्लाह के नजदीक मच्छर के एक पर के बराबर भी कीमत ना रखेगा, क्योंकि अल्लाह पाक और हलाल चीज के सिवा कुछ कबूल नहीं करते। इन अल्लाह तय्यिबुन ला युक्बलु इल्ला तय्यिब, अल्लाह पाक है, पाक के सिवा कुछ नहीं कबूल करते। ये देखिए कि माले हराम की बेइज्जती और उसका बेवक्त होना दुनिया में है, आखरत में क्या हाल होगा? और अजीज, जिनको उम्र सानी भी कहते हैं, तो इन्होंने जब पुराने उम्र के जमाने के आयत के वे नाजायज टैक्स बंद किए, तो जिन लोगों से नाजायज तौर पर माल लिए गए थे वो वापस किए गए, नतीजा क्या हुआ कि बैतुल माल जो था वो खाली हो गया, आमदनी बहुत थोड़ी हो गई। तो एक सूबे के गवर्नर ने इनके पास खत लिखा कि देखिए बैतुल माल में माल बहुत थोड़ा है, ऐसे ही ना जैसे आज फंड्स कम हो गए, कोई कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुल्क भी तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इनके इस अमल से बैतुल माल में माल कम हो गया, तो वो गवर्नर था उसने कहा कि मुल्क कैसे चलेगा भाई? तो इस पे उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसके जवाब में यही आयत लिख कर भेजी कि ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलो अजबक कसरतुल खबीस, कहाँ है आज ऐसे उमर बिन अब्दुल अजीज, आज हम कहते हैं खूब कमाते हैं तभी तो लेकिन मैं जो फील करती हूँ कि आज मस्जिदों से जो बरकत उठ गई है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि उसमें जो पैसा लगता है उसमें पता ही नहीं तैयब से लग रहा है कि खबीस से लग रहा है। दे दो, ले लो, हमें दे दो, जिस तरह मर्जी हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि थोड़े में बरकत डाल दें, इखलास पैदा करें अपने कामों में, कुरान और सुन्नत से जम के रहें। आप देखें, आप थोड़े से लोग भी काम करेंगे इंशाल्लाह, आपके थोड़े से रिसोर्सेज हैं ये भी बड़े हो जाएंगे। बड़ी बड़ी इमारतों से वो खैर नहीं निकलेगी जो आपकी छोटी सी इमारत से निकलेगी, और फिर आप अपने दिलों के अंदर इस जिम्मेदारी को महसूस भी करेंगे कि इखलास के साथ काम करने वालों का माल और उनकी एफर्ट्स और उनका वक्त कहाँ लगना चाहिए कि जहां से खैर उठे, जहां से खैर बढ़े। वरना आप देखिए कि आज तो लफ्ज एक है, इस आयत के ऊपर अगर आप इसका कोड नॉट ट्रू, यह आयत उसका ऑपोजिट है कि मेजोरिटी इज नॉट द अथॉरिटी। जब से डेमोक्रेसी आ गई, जमहूरियत आ गई, तो लोगों ने ये नारे लगाने शुरू कर दिए। आप देख लें दुनिया में हमेशा से आता है। अल्लाह के नबी की एक रिवायत बड़ी प्यारी मुझे लगती है, उसका खुलासा आपके सामने रखती हूँ। आपने फरमाया कि इंसानों की मिसाल तो ऊंटों के गल्ले की तरह है, 100 ऊंटों में से कोई एक काम का होता है। इज इट ट्रू? आज क्या ऐसा नहीं है? 100 में से कोई एक काम का बंदा आपको दिखेगा जो सही मानों में अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलने वाला होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ज्यादती पे मत जाएं, जो है उनको जमा दें। और यही वो चीज है जिस पे हम सब अगर जमें तो अपने इस काम को बेहतर कर सकते हैं। हम जितने भी लोग इस काम पे जमे हुए हैं ना, अगर हम अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, यकीन करें छा जाएंगे, एक दिन आएगा ये सारी बुराई खत्म हो जाएगी आपकी कोशिशों से। लेकिन अगर आपके सीखने सिखाने में कमी आ गई, अगर आपकी कोशिशें कच्ची पक्की हुई, मुझे गम ये है, यकीन करें मैं अपने दिल की बात आज आपसे कर रही हूँ कि मुझे ये गम नहीं है कि जो नहीं आ रहे वो क्यों नहीं आ रहे, मुझे ये गम है कि जो आ रहे हैं अगर ये आने के बाद भी कोई खूबसूरत नमूने ना बने तो बनेगा क्या। इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है, आपकी तवज्जो की जरूरत है, अपनी कीमत को पहचाने। अल्लाह आपको तैयब बनाना चाहता है, दिल के गंदे ख्याल, दिल की बातें गंदी मसरूफियात से निकाला। आज क्यों तब्दीली नहीं आ रही? मुसलमान थोड़े छूट है ये, 4 बिलियन से भी ज्यादा है मुसलमान। 313 ने नक्शा पलट दिया था, वो उस वक्त के हिसाब से अपने से 3 गुना बड़ी कुव्वत से मिल रहे थे। तो चले आज पूरी दुनिया की आबादी को जरा मुसलमानों के ऊपर डिवाइड करके देखें, तब्दीली क्यों नहीं आ रही? अल्लाह ताला ये सिखा रहा है, फत्तकुल्ला या उलिल अलबाब, अकल से काम लो, देखो सोचो कब तब्दीली आती, फिर उसी चीज के ऊपर जम जाओ जिस चीज को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया। यहां तक तिलावत सुनते हैं और साथ ही साथ फिर दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे आमाल का तस्किया कर दे, हमारी कमाइयों को पाक कर दे, हमारे अखलाक को पाक कर दे और हमारे मामलात को भी पाक कर दे। हम अपनी कमिटमेंट्स को निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل وبال عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
آیت نمبر 101، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھولی جائیں تو تم کو بری لگیں، اور جبکہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر یہ باتیں تم پوچھو گے ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، لہذا اف اللہ انہا، اللہ نے درگزر کیا ان سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور تحمل والا ہے. اور ایسے ہی سوال کی بنیاد پہ پچھلی قوم کا تذکرہ کر دیا گیا آیت 102 میں، قد سألھا قوم من قبلکم، ایسی ہی باتیں پوچھی تھی تم سے پہلے قوم نے. کون سی قوم؟ بنی اسرائیل. کون سے سوال تھے؟ گائے کے بارے میں. پھر کیا ہوا؟ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے اس کے بعد ان باتوں کے منکر، یعنی پہلے سوال کر کر کے مشکل کر لیا دین، اور اس کے بعد پھر اس بات پہ عمل نہ کر سکے تو منکر ہو گئے. یہاں دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا خوبصورت ادب سکھا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ صرف سوالوں سے دین کو حاصل نہ کرو، صرف سوال ہی کرتے رہنا اور عمل سے دور رہنا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. علم والوں کو بے وقت تنگ کرنا درست نہیں، راہ چلتے سوال کرنا یہ علم کے ادب کے خلاف ہے. یہ صرف علمی مجلسیں جو ہیں یہ علم کی ادائیگی کی امانت کو ادا کرتی ہیں، اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے. بعض لوگ محض شغلن سوال کرتے ہیں، درست نہیں ہے. ان آیت کے پیچھے چند واقعات بھی ہیں. ایک مشہور واقعہ جو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، عقرہ بن حابس ان کا نام تھا، حج کی فرضیت کی آیتیں نازل ہوئیں تو آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر حج فرض ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کہنے لگے کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر دوبارہ پوچھا، تین بار یہی سوال پوچھا، اللہ کے نبی خاموش رہے. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اگر میں تمہارے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم پہ اس کو کرنے کی قدرت نہ ہوتی، یعنی پھر تم وہ کام کر نہ سکتے. تو منع کر دیا کہ اس وقت قرآن جب نازل ہو رہا ہے، لا تسلو، مت سوال کرو، یعنی جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تم اس بارے میں زیادہ باتیں نہ پوچھو، کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے. आप देखिए कि जब बारिशों का मौसम होता है ना, तो बीज कहीं भी गिरा पड़ा होता है ना, तो उग जाता है। इसी तरह जब नज़ूले वही की बारिश का सिलसिला जारी था, तो लोग जो भी सवाल करते थे उसके जवाब में अहकामात आते जा रहे थे। और यसअलूनका से जितनी भी आयतें शुरू होती हैं, तकरीबन 11 आयतें हैं कुरान पाक में, या 9 हैं, सही सब मुझे याद नहीं, तो वो सारी लोगों के सवालों की वजह से है। तो अल्लाह ताला यहाँ मुसलमानों को एक हुक्म देते हैं, और वो क्या है कि मिजाज अमल वाला बनाओ, सवालों वाला ना बनाओ। सवाल बराए सवाल ना किया करो, ये इल्मी चटखारा होता है। जब हमारी जुबान बहुत सारे चटखारे ले लेती है ना, तो उसके बाद फिर हम इस तरह की बातें भी हैं, राह चलते ना, मौका देखते ना, वक्त देखते, फोन करते तो शुरू हो जाते हैं, मैंने ये करना, अरे नहीं वो भी पूछना था ना, कोई आगे की बात ना पीछे की बात, के पहले मुझे इस गाड़ी का मैं सफर नहीं करूंगा, मुमकिन ही नहीं है ना। तो जिंदगी के इस सफर में भी हर मसले की हिकमत समझ नहीं आती। यहाँ अल्लाह ताला उन लोगों की भी माइंड सेटिंग करते हैं जिनका आज के दौर में फैशन ये बन चुका कि फर्स्ट आई विल अंडरस्टैंड, पहले मैं समझूंगी फिर अमल करूंगी। मुझसे खुद किसी ने कुछ अर्सा पहले कहीं दर्स में कोई सवाल किया, मैंने उसका जैसा मौका था अभी सवाल करने के बाद, उन्होंने खुद ही आगे कह दी, कहती वैसे मेरी समझ में ये बात नहीं आती, यही कोई मसला था, कोई चार शादियों का या कोई ऐसे कोई मामला होगा। तो उनका वो सवाल का जो जवाब था ना, कि वैसे मैं सच बताऊं मेरा नहीं दिल ठुकता इस पे, ये सोच बंद करने की जरूरत। एक चम्मच में तुम्हारा गूदा आ जाए दिमाग का, उसमें क्या आसमान के रब की बातें समझ आएंगी। जो बहुत ज्यादा विजडम्स पूछ रहे ना, ये क्यों, इसकी हिकमत, इससे क्या, फिर ये क्यों नहीं, फिर वो क्यों नहीं, तो असल में वो अल्लाह ताला के अल हकीम होने का इनकार करता है। हम जहाज में जाते हैं, कभी नहीं कहते कि इस जहाज की पहले सारी चीजें बताओ, हिकमत बताओ, पर आगे क्यों नहीं लगे, पीछे क्यों लगे, बीच में क्यों लगे, और सीटों का रुख ऐसा किया, और सीट बेल्ट क्यों बांधे, और कुछ करके देख लीजिए, आपको फौरन उतार देंगे। असल दीन का जो हुक्म है ना, वो ये है कि मानो, अमल शुरू कर दो। समझ में नहीं आ रही ना बात, अमल शुरू कर दो। ये अल्लाह की रहमत है कि जो ही आप अमल करोगे ना उस पे, तो बाद में आपको उसकी हिकमतें समझ आएंगी। बस लोग तावीलात कर करके दीन को मुश्किल कर देते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि दीन मुश्किल होता है। इसी तरह आप देखिए कि उस दौर में एक शख्स आया, उसने अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा कि मेरे बाप का पता बताइए, मेरा बाप कौन है। मैं आपको एक रिवायत पढ़ के सुनाती हूँ, इंशाल्लाह इससे भी बहुत सारी बातें नसीहत की होंगी। कि लोग नबी सल्लम से अजीबो गरीब किस्म के सवालात पूछा करते थे, और वो सवाल जिनमें ना दुनिया का फायदा होता ना दीन का होता, तो अल्लाह के नबी इन सवालात से बहुत आजुर्दा रहते, परेशान होते। एक रोज मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, ला तसलूनिल यौम अन शयइन इल्ला बयंतु लकुम, का जो पूछते हो पूछो, फिर मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। यानी गुस्से में आपने ये बात कही कि जो पूछोगे मैं बताऊंगा। ये बात सुन के सहाबा कराम के सर झुके हुए थे, और वो जारो कतार रो रहे थे। यानी उन्होंने अल्लाह के नबी का ये गुस्सा नहीं देखा। देखिए जो बंदा गुस्सा नहीं करता ना, तो समझदार बंदा उसको थोड़ा सा भी गुस्से में देख के सीधा हो जाता है कि इसको गुस्सा आ गया फिर कोई बात होगी। तो सहाबा कराम अल्लाह के नबी का ये अमल देख के रोए, किसी में कोई हिम्मत ना हो कि कोई बात करे। इस वक्त एक शख्स अब्दुल्ला बिन हुजाफा, जिनके बारे में लोग चे में गोइयां किया करते थे कि इनका बाप कौन है, यानी इतना मशकूक नसब था उस वक्त कि बच्चे के बाप का पता ही नहीं होता था। तो उन्होंने अर्ज की, मन अभी या रसूलुल्लाह। अब उन्होंने लोगों से बातें सुन सुन के दुखी हुए हुए थे ना, तो कहा अल्लाह के नबी आज आप बता दीजिए कि मेरा बाप कौन है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मुझे क्या पता, बल्कि आपने कहा कि अबू का हुजाफा, तेरा बाप खुजाफा है। इनकी वालदा अपने लड़के के सवाल पर कांप उठी और कहने लगी, ए अब्दुल्ला, तुझसे ज्यादा नाफरमान भी किसी का बेटा हो सकता है, तू तो मुझे बरसरे मजलिस रुसवा करना चाहता था। यानी माँ कांप गई कि अगर इसकी जगह किसी और शख्स का नाम आता तो मेरा हाल क्या होता। लेकिन आप देखिए कि इस तरह की बातें कर करा के लोगों ने जब दीन को मुश्किल किया और लोगों के पोल खोलने चाहे, तो अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि ऐसी बातें ना पूछा करो जिसका तुम्हें फायदा नहीं। अब आप कहेंगे देखा फिर तो इसका मतलब ये कि हम सवाल ही ना पूछें। तो देखिए इल्म हासिल करने के बाद जैसे हम बात करते हैं और उसके बाद अमूमन जहां मौका होता है, मौका दिया जाता है कि कुछ सवाल आपके जहन में तो कर लें, वो फायदामंद है। मसनून अमल के पहले इल्म हासिल करें एक खास मौजू पे मसले पे, उसके बाद उसी के मुतालिक सवाल करें तो फायदा होगा, और सिर्फ सवाल बरए सवाल से कभी फायदा नहीं होता। और चूँ चरा नहीं करनी चाहिए। यहाँ देखिए अब कुछ चीजें हैं ना, जैसे बात होती है कि जो नहीं कहा गया उसको छोड़ दो, इसी तरह नबी सल्लम ने फरमाया कि कुछ बातें दीन की ऐसी हैं जिसमें खामोशी है। आपने फरमाया हलाल उबैयन, हलाल बिल्कुल वाजे है, वल हराम उबैयन, और हराम भी वाजे, दो एक्सट्रीम्स है। इस्लाम ऐसा नहीं है कि वो कि पता नहीं क्या हलाल है पता नहीं क्या हराम है, और कहा कि जहां खामोशी है वह अल्लाह की रहमत है, जो समझ आती है कर लो। यही मिजाज अपनी जिंदगी का रखें, तो रिसर्च कर ले तहकीक कर ले, लेकिन लोगों की बुराइयां ना टटोले, खोज में ना जाए। एक मारूफ मसला, एक ऐसा अरसा हुआ कि अमेरिका में और कनाडा में एक बहुत मारूफ चेन है, हलाल मीट प्रिजर्व बेचते हैं और कबाब और जो भी मतलब फूड कुक्ड होता है वो बनता है। तो उसके बारे में लोगों ने ये बात फैला दी कि इससे ना खाएं, ना मैं नहीं लेती, जरूरत ही नहीं है लेने की, कि इनके अंदर जो काम करते हैं वो तो सारे ज्यूज हैं, यानी इनके वर्कर्स नॉन मुस्लिम हैं। अब बहुत इजतराब होता है ना, और ऐसी बातें हर कुछ महीने के बाद फैलती हैं, फलां पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर उससे ना लेना, वो तो दूसरों का मीट लेके बेचता है, इस तरह की बात। फिर वो बेचारे अपने इश्तेहार लगाते और क्या कुछ होता है। इसी तरह इस कंपनी का भी हुआ, फिर जब उन तक बात की, जाहिर है कि उन तक हुई, तो फिर उन्होंने पूरी उसकी एक यानी रिकॉर्डिंग बना के लोगों को भेजी, फिर अपने वर्कर से बात कराई कि हम किस तरह मीट को हलाल करते हैं, अगर उसमें कुछ जूस भी है लेकिन वो मीट को हलाल करने का तरीका और वो सब कुछ इस्लामी है। तो आप देखिए मैं तो इस बारे में जो खुद करती हूँ वही आपको बताऊंगी, फिर इसके बाद जो आपका दिल चाहे वो करें। पहली बात है कि इन मसलों में क्या खाएं क्या ना खाएं बहुत नींद में ना करें, अपना फूड वैसे ही सिंपल रखें। जिनके साथ मैं रहती हूँ आप उनसे भी पूछ लें कि मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ रोटी साल है, 20 चीज़ें वो कहेंगे आप ये नहीं खाती, आप कुछ भी नहीं खाती, नहीं मुझे घर की चीज़ मिल गई मैं वही खा रही हूँ, सादी घर का 2 दिन का पका हुआ सालन है, मैं उसके साथ रोटी खाने को पसंद करती हूँ कि मैं बाजार से कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो मुझे अच्छी लगे पसंद है खाऊँ। ये मेरी आदत है, मैं नहीं कहती आप ऐसा करें, बाहर का खाएं जहाँ दिल मानता जहाँ नहीं मानता छोड़ दें, लेकिन अंदर की बातों की बाल की खाल तो दीन मुश्किल हो जाएगा, ये गलूब होता है। दीन में अफरात और तफरीत नहीं करना, जिसका दिल किसी चीज पे नहीं ठुकता वो अपने लिए ना खाए लेकिन दूसरों को तंग ना करे, क्योंकि ये भी एक इज्तमाई गिफ्तों का सिलसिला चल चुका है, फुलां कंपनी फुलां 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 ना टटोलो जिससे दूसरों की एफजोई हो। बाकी अगर तुम कुछ बातें पूछोगे इन तसलु अनहा खीना युनजलुल कुरान तुबदलकुम अफल्लाहु अन्हुम वल्लाहु गफूरुर हलीम, ये बात कह के बता दी कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें बताई जाएंगी तो तसुकुम तुम्हें बुरी लगेंगी, जिन पर अमल करना मुश्किल होगा, जिनका मालूम होना तुम्हें नापसंदीदा होगा। और बनी इसराइल की मिसाल दे दी कि कद सालहा कौमुन मिन कबलिकुम, तुमसे पहले एक कौम ने सवाल किया था, सुम असबहु बिहा काफिरीन, वो इसके ऊपर काफिर हो गए। जो बहुत पूछ लेते हैं ना फिर मान नहीं सकते, फिर किसी वक्त हद टूट जाती है और वो हद खराब होती है। अब इसका ये भी हरगिज नहीं मतलब कि आंखें बंद करके नाजायज चीजें भी खाते जाओ, जिनका पता भी जो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं हलाल चीजें डालते वो भी खा लो कि नहीं जी सवाल नहीं करना और ये दुरुस्त नहीं और वो नहीं है। अब इस लोग असल में पीछे वाली बातों से इंशाल्लाह सबका रब जुड़ेगा। पहले आयत को देख लेते हैं, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम, नहीं मुकरर किया अल्लाह ने कोई बखीरा और ना कोई साइबा और ना वसीला और ना हाम। फिर कैसे यहां से ये सारे कहां से आ गए, वलाकिन अल्लज़ीन कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, ये जो काफिर हैं वो अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं, ये बहतान घड़ते हैं कि कोई बहीरा है कोई साइबा है कोई वसीला है कोई हाम है, और ये झूठ क्यों बांधते हैं, वो अक्सर हम ला याकिलून, अकल की कमी की वजह से। ये आयत बुनियादी तौर पे अरबों की कुछ बिदात के बारे में है। यहाँ चार जानवरों के नाम। आए हैं, इन्हीं को देखेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे। जो पांच बच्चे पैदा कर देती और आखिरी बच्चा नर होता तो सूंढनी का कान चीर कर उसको छोड़ देते। इस पर सवारी करना, इसका गोश्त सब अपने ऊपर हराम कर लेते। यहाँ छोटी सी बात सुन लें जिससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी, कि हम इंसानों में जैसे बेटा पैदा करने वाली औरत की बड़ी इज्जत होती है ना, इसने चार बेटे पैदा किए, तो जानवरों में बेटी पैदा करने वाली की बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि उनकी नस्ल उससे चलती है ना। बकरी से तो आगे नस्ल चलेगी, या बकरे से बेचारे से उस तरह तो नहीं चलेगी। तो जो फीमेल, जो कैमल थी या गोट थी या कोई और थी, तो वो जब चार फीमेल्स पैदा कर लेती है और उसके बाद एक बेटा पैदा हो जाता नर, तो कहते बस अब ये पहुंची हुई है, ये बहुत मोहतबर है, इसकी खूब इज्जत करो। जैसे उस बहू की बहुत इज्जत होती है जिसके चार बेटे हो, हाँ, तो ये बड़ी इज्जत करते, कहते बस 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 आज के बाद इसको तंग नहीं करना, इसको कोई ताना नहीं देना, अब हम दिल से इसको बहुत क्योंकि मैं ये आयतें पढ़ती हूँ ना, तो मुझे सेन में चार औरतें ही आती हैं। चलिए साहिबा को देखो। साहिबा किसको कहते थे? अगर कोई आदमी सफर पर जाता या बीमार हो जाता तो वो नजर मानता कि अगर मैं खैरियत से घर पहुंच गया या सेहत याब हो गया तो मेरी ये ऊंटनी साहिबा बन जाएगी, और इसका दूध, गोश्त और इस पर सवारी भी हराम कर लेता। ऐसे एक मन्नत मान लेते हैं मुश्किल में, अपने पास से कोई नहीं, गोश्त हलाल है लेकिन इस मुश्किल से अल्लाह मुझे निकाल दे तो ये चीज नहीं खाऊंगी। ये वही बात है, आज भी लोग करते हैं ऐसी चीजें, खुद साख्ता मन्नत है, और ऐसी को साहिबा कहते हैं। अब ये सारा इधर उधर फिरती रहती, लोगों को खूब सताती, लेकिन लोग इनको हाथ नहीं लगा सकते थे कि ये मन्नत की साहिबा है। तीसरी थी वसीला। वसीला उनकी बकरी अगर बच्ची जनती यानी बेटी और बच्चा जनती तो वो इनके बुतों का होता, यानी फीमेल्स अपने लिए रखते क्योंकि उसे नस्ल बढ़नी थी, और मेल्स जो होते थे वो जो बुत हैं उनकी दरगाहों पे और उनकी कब्रों पे जाके छोड़ आते। और अगर एक पेट से बच्ची और बच्चा दोनों पैदा होते, यानी एक ही हमल में बकरी के एक बेटा और एक बेटी पैदा हो जाता, तो फिर भी बच्ची को बच्चे के साथ मिलाकर बुतों की नजर कर देते, फिर दोनों ही बुतों को दे आते। कोई अकल बनती है? थुक बनता है? नहीं। अब ये जो बच्ची अपने भाई के साथ मिलकर बुतों की न्याज की होती, इसको वसीला कहते थे, वसला से मिला दिया, दो मिल गई। चौथी चीज थी इनके अंदर हाम के नाम पे। हाम वो ऊंट जिसकी जुस्ती की वजह से 10 बच्चे पैदा होते, यानी किसी भी मेल ऊंट की वजह से 10 ऊंटनियां बच्चे पैदा कर देती, 10 बच्चे पैदा हो जाते तो कहते ये बुजुर्ग हो गया, अब ये बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, पोतों वाला हो गया। बस कहते हैं कि वो ऊंट के नाम पे दे आते, ना फायदा लेते ना कुछ, और इन सारी चीजों को करते क्या थे कि ये अल्लाह का हुक्म है। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? बिदत कहते हैं। आज हमारे यहाँ भी तो कुछ ऐसी बातें होंगी ना। अल्लाह ताला ने ये आयतें हमारे सामने पेश कर दी, और वो क्या है कि जिस ये पता चल जाएगा कि कैसे अल्लाह के दीन को लोग बदलते हैं। देखिए हमारे यहाँ ये जो एक मारूफ बात है ना कि शिर्क और तौहीद में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक बाल बराबर फर्क है। ये बात आज समझ जाइए, पूरी सूरत अल-अनाम इसी थीम पे चलने वाली है कि शिर्क और तौहीद के अंदर सिर्फ बाल बराबर फर्क होता है, और ये बाल क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल का। जो लोग अतीउल्लाह और अतीउर्रसूल के मुताबिक अपने आप को रखते हैं, वो उसी दीन को अपने लिए काफी समझते हैं जो अल्लाह के ने रसूल के जरिए दिया होता है। जो लोग इस हद को तोड़ देते हैं ना, तो हर दौर में वो दीन में कुछ रसूमात बढ़ाते जाते हैं, اختیار کرتے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے کہ ہیں کہ یہ اللہ کا کام حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا. کوئی نیا طریقہ جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو اس کو نیکی سمجھ کے کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے. بتاؤ آپ دیکھیے کہ کوئی حکومت کس نوٹ کو قبول کرتی ہے جو اس کا چھاپا ہوتا ہے؟ کوئی اس سے بھی اچھا نوٹ بنائے تو کوئی حکومت قبول کرے گی؟ نہیں کرے گی. اسی طرح یاد رکھیے، کل ہم نقلی اعمال پیش کر کے جنت کا دروازہ نہیں کھلا سکیں گے، لیکن اکثر دنیا میں جہاں بھی بدعت پھیلی اس کی بہت بڑی وجہ کیا تھی، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف کے رسول نے نازل کی، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا، ہم کو کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی باپ دادا کا نام لے کر غلط چیزوں کو کرتے تھے، باپ دادا کرتے تھے، ان کے دور کی باتیں، ان کی باتیں. اب اللہ تعالیٰ کا کمنٹ اس پہ نوٹ کیجئے گا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم ہی نہ ہو، یعنی وہ علم سے دور تھے، نہیں پہنچے علم ان تک، بھولے بھالے تھے، سیدھے سادے تھے، اتنا دور دورہ نہیں تھا علم کا، صرف علماء کی حد تک دین تھا اس وقت، عام لوگوں تک نہیں پہنچا. ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پائے ہوں. کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ جب باپ دادا کی تعظیم کی بجائے ان کی تقدیس شامل ہو جائے، یعنی ریسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ہولینس شروع ہو جائے. انگلش میں یہ لفظ پڑھ لکھیں گے نا تو بات بہت جلدی سمجھ آئے گی. ماں باپ کی، بڑوں کی ریسپیکٹ کرنا اور بات ہے، اور ان کو ہولی سمجھنا، ہولی تو سمجھتے نا، ہولی ڈے، ہولی سمجھنا فرق ہے. جب باپ دادا کی ریسپیکٹ کی بجائے ان کو ہولی سمجھ لیا جاتا ہے تو یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں منع کر رہے ہیں. کیوں بناتے ہو یہ بحیرہ صاحبہ؟ آپ دیکھیں سنتے اور سناتے وقت بھی ہنسی کیوں آ رہی تھی کہ بالکل بیکار باتیں. اچھی بھلی چیز ہے، اچھا بھلا جانور ہے، اس کو حلال کر رہے ہو، اس کو حرام کر رہے ہو. آگے آپ پڑھیں گے آپ ہنسیں گے، یقین کریں. سورت انعام پڑھتے ہوئے بعض دفعہ ان کی حماقت پہ رونا آتا ہے، کبھی ہنسی آتی ہے کہ پیٹ میں ہے تو یہ ہے، زندہ ہے تو عورتیں کھائیں گی، مردہ ہے تو عورتیں نہیں کھائیں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں کس نے کہا؟ کسی حلال کو حرام بنا سکتے ہو؟ تو کسی حرام کو حلال بھی نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کا کام ہے. تمہیں اللہ نے دین کو ماننے کے لیے بھیجا ہے، بنانے کے لیے نہیں بھیجا. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ کا بچہ سکول گیا، اس کا آج امتحان تھا، آپ بڑی دعائیں مانگ رہی تھیں کہ اللہ کرے خیر سے وہ پیپر دے کے آ جائے. جب بچہ واپس آیا تو آپ کہتے ہیں بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ کہتا ہے ممی سوال بالکل احمقانہ تھے، بالکل وہ تھے ہی نہیں جو ہونے چاہیے. میں نے کیا کیا؟ پہلے وہاں بیٹھ کے کوئسچن پیپر بنایا، جو سوال ہونے چاہیے تھے نا وہ بنائے، پھر میں ان کے جواب لکھ کے آیا ہوں. آپ سوچیں آپ کا تو میرا حال بلڈ پریشر ہی لو ہو جائے گا. آپ کہیں گے ہائے ایک سال اور رہو گے اس کلاس میں. تو سوال سمجھ آ گئے. ہمیں کیا کہے؟ تم پیپر حل کرو، تم سوال بنا رہے ہو. وہ لوگ جو آج دین کے نام پہ نت نئے اضافے کر کے اپنی بازار چمکا رہے ہیں اور اپنی رونقیں بڑھاتے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے کہا؟ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کیا؟ کیا ایسا کہا؟ مان لو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرو، لیکن جن معاشروں میں یہ شوق کم ہو جاتا ہے نا وہاں بدعات کا رواج شروع ہو جاتا ہے. اور جب پوچھو تو ایک بہت معروف بات ہے، حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ تو آئیے ذرا ہم انہی باتوں کو دیکھ کے پوچھ لیتے ہیں، کیا بحیرہ اور صاحبہ بنانے سے کسی کا دل ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا. کسی کا نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اگر آج کی ماڈرن لینگویج میں اس کو سمجھیں تو یہ تو اینیمل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. کچھ جانور بچ گئے نا ذبح ہونے سے ان کے اس قانون بنانے سے، تو کیا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں؟ جب ان کا کچھ حرج نہیں، تو آج جب ہم کسی کو کسی ایسے کام سے روکتے ہیں جو اللہ کے نبی اور رسول نے نہیں کیا، تو لوگ کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا میلاد ہی تو پڑھا ہے، اللہ کے نبی کی تعریف ہی تو کی ہے، کیا ہوا اگر اللہ کو نبی کو اللہ کے برابر کر دیا تو ہوا کیا؟ ان کا تو مقام بڑا اعلیٰ تھا. حرج یہ ہے کہ اللہ نے نہیں بنایا. और इस हरज को वो पहचानता है जो कुरान और सुन्नत को पढ़ा होता है। इल्म के बगैर ये बात आपकी माएं, आपकी नानियां, दादियां, सासें नहीं समझेंगी। कुरान और सुन्नत का बाट तो डला हुआ ही नहीं है, तो हर वो बंदा जो नए काम कर ले ना, दिल दुखे, इसका क्या ताल्लुक है दिल दुखने से? आप कहते सवाब ही है, आप कुरान से मना करें, नहीं मना करें। हर्ज ये होता है कि जब ऐसा दीन आम हो जाता है तो असल दीन छुप जाता है, मुश्किल लगता है। कौन आपकी तरह दो दो तीन तीन घंटे बैठ के कुरान का एक एक लफ्ज लिखे, रटे, याद करे? इतनी देर में तो आप जितने माशाल्लाह साथी यहाँ बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि जब से हमारा ये लेसन शुरू हुआ है आप लोग शायद 10 कुरान पढ़ सकते थे। सच्चे के झूठ? पारा 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 पढ़ते जाएं आप सारे। आप यहाँ से 10 कुरानों का सवाब का बंडल उठा के जाएं और यहाँ सिर्फ आपने चंद आयतें पढ़ी, कौन मानेगा? ये मुश्किल हो जाता है लोगों को। आज ऐसी महफिलों से जो लोगों को एलर्जी है ना, उसकी ये वजह है। उनको तो एक रात दें, आप देखें 2000 लोग जमा होंगे, आप झूम झूम के, जरा जगह नहीं होगी मस्जिद में बैठने की। वो कहते हैं सेटिस्फेक्शन है। देखिए, हर बंदे के दिल में ये मौजूद है कि मैंने कुछ करना है दीन के लिए। जब उनको ये चॉइसेस मिल जाती है ना करने की, हर महीने में एक मिलाद, हर 6 माह के बाद एक कोई कुरान खानी या कुछ भी इस तरह, तो वो सेटिस्फाइड है, कहते हैं शुक्र अल्लाह का, इस 6 महीने का हक दे दिया हमने अल्लाह का। मेरा कहीं दर्स हुआ, बहुत अच्छे लोग थे माशाल्लाह, बहुत मॉडर्न फैमिली थी। पहली दफा उन्होंने ये दर्स सुना, यदि उनके खानदान में कभी इस तरह का हुआ नहीं था, तो बहुत अच्छे तरीके से सुना, इंतहाई खूबसूरत माहौल था। तो दर्स के बाद एक उठी और तारीफ जो भी कर रही थी उनकी, जो करना था उन्होंने करके, कहती मैं तो खो गई, आपका जो दर्स है ना, ऐसा दर्स तो हर साल में एक बार जरूर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इनका बेचारी का मैदा ही इतना है, ये एक साल बाद ही बहुत कर लेंगी ना। तो ये जो सालाना रिवाज है ना नेकियों का, माहाना नेकियां, फला मौके पे, ये कब आती हैं? जब ये बातें होती हैं, जब असल दीन पीछे होता है। देखिए, जिसने खाना पकाया नहीं होता उसको खाने का जायका भी नहीं आता। आप खाना पकाते हैं, आपको पता है इसमें मैंने पहले भी यही डाला था तो ये टेस्ट बना था। आप मिसाल है कोरमा पका रहे थे, आपने सब कुछ डाला, हो सकता है पास आपकी बहू बेटी खड़ी हो जिसको पता ही नहीं कोरमा होता क्या है, वो कहती है अम्मी ये केचप की बोतल पकड़ो, इसमें 4 चम्मच डाल दो। आप रोकेंगे कि नहीं? आप कहेंगे सबर करो जरा, पहले मेरे हाथ का खा के देखो। जब लोगों को असल खाना पकाना आ जाएगा ना, इंशाल्लाह ताला वो ऐसी चीजों पे परेशान नहीं करेंगे आपको। अल्लाह ताला यही हमें पैगाम दे रहे हैं, क्या वह लव का ना आबा उहुम ला या लमून शैया, नहीं पता माँ बाप को फिर भी तुम उनके पीछे लगोगे, वला यहतदून, हिदायत नहीं पाएंगे। और इस टॉपिक का ततिम्मा है आयत 105 में, आखिरी बात इसके बारे में, जिससे इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा कि या अय्युहल्लज़ीना का नाम लेकर खुद को रुसवा ना करो, खुद को गलतियों पे ना ले जाओ, खुद ऐसे काम करके कि जो माँ बाप करते थे और तुमको कि चूंकि वो भी करते थे तो अब मैं भी करूं, ऐसा ना करो, अपनी फिक्र करो, बाकी रह गए दूसरे लोग। तो ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़हतदैतुम, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो शख्स जो गुमराह है, शर्त क्या है कि तुम खुद हिदायत पे रहो। तुम हिदायत पे आ जाओ तो बड़े से बड़ा भटका हुआ शख्स जो है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी रह गई बात क्या सही है क्या गलत, तुम्हें तो पता चल गया, उनको नहीं पता, कब पता चलेगा? इल्लाह ही मर्जियुकुम जमीया, अल्लाह की तरफ तुम सब का लौट कर आना है, सब आओगे, फिर फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तुम अमल करते थे। ये आयत दो एक्सट्रीम रवैयों की वजह से मिस इंटरप्रेट होती है, उसको भी देखेंगे और साथ अपनी भी देखेंगे। मुख्तसिर सी बात है, कुछ लोग इस आयत को लेकर क्या कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अपनी अपनी फिक्र करो, दूसरों की फिक्र ना करो, जी तुम अपनी फिक्र करो मेरी ना करो। लोगों से ये जुमला सुनते कि भाई तुम मुझे ना कहो, जो मैं कर रही हूं मुझे करने दो, दूसरों को छोड़ दो, और कहते हैं कि जी तुम अपनी भली ना बेड़ो, अपने लफ्जों में। कुछ लोग कहते हैं तबलीग की कोई जरूरत नहीं, लोगों को कुछ ना कहो, कोई दीन की दावत ना दो, क्योंकि हर एक को पता है। तो उनके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक का मैं एक कॉल पढ़ के सुनाती हूँ। خطبہ دیا، کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم یہ آیت یعنی علیکم انفسکم پڑھتے ہو، یعنی تم پر تمہارے ہی نفسوں کی ذمہ داری ہے اور اس کا غلط مفہوم ذہن میں رکھتے ہو. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان الناس اذا راوا المنکر، کہ جب لوگ برائی کو دیکھے، یہ اس کا مفہوم لینا کہ دوسروں کو نہ منع کرو، خود صحیح عمل کرتے رہو، بالکل نہیں ہے. دوسری طرف اس آیت کو اس طرح مس انٹرپریٹ کرتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں، اپنے گناہوں کا خمیازہ دوسروں کے سر پہ ڈالتے ہیں. شوہر ہی نہیں پسند کرتے، ساس کو غصہ آ جاتا ہے، میرے بچے مجھے مس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے تلواریں نہ چلاؤ. یقین کریں یہ آیت اس مفہوم میں آتی ہے کہ تم اپنی گمراہیوں، اپنی سستیوں، اپنی غلط فہمیوں، اپنے ڈس آرگنائز ہونے کا الزام اپنے گھر والوں پہ مت لگاؤ. جو جتنا کوشش کرے گا اللہ اولیا بدلتے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں سوری سوری پیچھے ہو جاؤ، لوگ برا مانیں گے. کہا نہیں، لا یضرک من دلہ، بگڑے سے بگڑا ہوا شوہر بھی بیوی کے لباس اور حجاب پہ ذرا تنقید نہیں کر سکتا، شرط کہہ کہ پہلے تم بھی اپنے دل سے سچی ہو کہ زخت دئی تم. میں نے سوچ لیا کہ مجھے ایسے کرنا ہے. ہم چار بال بھی مرد کی مرضی کے بغیر کہتے ہیں نہیں پلکنگ کرنی ہے کیونکہ مرد منع کرتے ہیں، مرد مردوں کی خوشی ہے، اپنے گناہوں کو اپنے سر پہ لو. یہ پچھلی آیت کے اوپر کمنٹ ہے. باپ دادا کا نام لے کے غلط کام کرتے ہو تو کیا تم باپ دادا کے نام پہ باقی سارے کام کرتے ہو؟ کیا ہم سب اپنے باپ دادا کے دور کا ہر فیشن کر رہے ہیں؟ جیسے آپ کی دادی کی شادی ہوئی تو خیر سے ایسے ہی آپ کی پوتی کی شادی ہو رہی ہے. وہ غرارہ سیٹ جو دادی نے اپنی شادی پہ پہننا تھا، کہ آج کی دلہن کا ویڈنگ ڈریس ویسے ہی ہے؟ جو چھپر کھٹ اور جو صوفے کرسیاں دادی کے وقت کہتے، کیا وہی ہے دادا کی بات ہے؟ پھر ایک اور بہت بڑا شبہ اس میں آ جاتا ہے، جی فلاں تو یہ کر رہا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا، ہم نے یہ جو باتیں پڑھی، اب اسی پہ اگر آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی فلاں اخبار میں آرٹیکل آیا، وہاں تو اتنے فسائل لکھے ہوئے تھے شب برات کے اور اس کے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے، فلاں ٹی وی پہ فلاں کے کہہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کے اوپر نظریں کیوں لگاتے ہو؟ تم اپنی غلطیوں کے الزام بےچارے مولویوں کو کیوں دیتے ہو؟ کیا مولویوں کے کہنوں پہ تم نے باقی کام کر لیے؟ مولویوں کے کہنے پہ سو چھوڑ دیا، بے حیائی چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی. تو پھر جو کام تم نے کرنا ہوتا ہے وہی کرنے لگتے ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ تم اپنی فکر خود کرو. تمہارے ماں باپ نہیں پہنچ چکی بات، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. تم ان کے لیے دعا کرو، اچھے صدقہ جاریہ بنو. کہو کہ اللہ، میری ماں بڑی بھولی تھی، کسی سکول نہیں گئی، کسی مدرسے میں نہیں گئی، بچپن سے ان کو گھرداری میں ڈال دیا گیا، اب تو نے مجھے توفیق دی، اب میں بھی اچھے کام کروں تو ان کو بھی اس کا اجر دے، انشاءاللہ اللہ دے گا. اور اگر ان کا نام لے کے غلط کام کرتے رہیں گے تو کل قیامت کے دن پورا ہمارے کا. یقین کریں یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اگر اس پہ غور کریں گے نا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما
आयत नंबर 101।
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. دیکھیں سبحان اللہ، ہر چیز، ہر آیت جیسے جیسے کھلتی جا رہی ہے کتنا پیار آ رہا ہے. اور ہماری استاذہ کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، جو اتنی تشریح کے ساتھ ہمیں ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دے رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. کیا کبھی سب آپ کو ایسے نہیں فیل ہو رہا جیسے آپ کا دل کھلتا جا رہا ہے، شرح صدر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، ڈراپ بائی ڈراپ جیسے قطرہ؟ جی بیوٹیفل لیسن، جی بالکل. الحمدللہ الحمدللہ. جیسے قطرہ قطرہ اندر جا رہا ہے تو اندر سے، جیسے وہ کہتے ہیں نا، جیسے جی ٹی این سپرے ہوتا ہے تو وہ ساری کیپلریز آرٹریز کھلتی جاتی ہیں. تو ہمارے لیے یہ قرآن کا سفر اتنا پیارا ہے، سبحان اللہ. اور دوسری بات دیکھیں، ہمارا ہم نے جیسے ہی سنت کی کتاب شروع کی ہے اور توحید کی ہم نے مکمل کی ہے، تو آیات بھی اس کے ساتھ ساتھ برابر برابر جا رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آئی اوپننگ اگزیکٹلی بالکل. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہ حضور صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی لازمی ہے، کتنی ضروری ہے. سو ان سوچوں کے آپ سب ریلیکس ہوں، بریک کریں اور بس سب اس پہ نہ ریفلیکٹ کرتے جائیں انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ 20 منٹس کا بریک ہوگا اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.